अच्छा संस्कृत श्लोक है, अहम निजम परो देति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नांत वसुधैव कुटुंबकम। तो सिस्टर का बहुत बहुत सम्मान है और हम मोमेंटो देकर दीदी से चाहेंगे कि इनका सम्मान करें और आप सब तालियों से इनका सम्मान करेंगे। देर ना करते हुए आज 17वीं SIR कॉन्फ्रेंस और मेडिटेशन रिट्रीट का समापन सत्र, और आप सब पिछले 3 दिनों से बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। इतना अच्छा ये लग रहा है कि ये बारिश जो बाहर है हमको बड़ा सहयोग दे रही है, क्योंकि हम कहीं आ जा नहीं पा रहे, आराम से यहीं पर बैठे हुए रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा सहयोग की बात है। सो मैं चाहूंगा कि आप सभी जितने दिन से रह रहे हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का भोजन मिल रहा है, और भोजन खाने के बाद आपको लगता होगा कि कितना अच्छा भोजन बनता है, और ये भोजन बड़ा प्योरिटी के साथ बनाया जाता है। और तीनों टाइम जो हम लोग भी सोचते हैं कि आज क्या बना होगा, तो उसी हिसाब से सब प्रिपेयर होके वहाँ जाते हैं। और आज हम सोच रहे हैं कि आज हमारे गेस्ट, चूंकि आज हमारा समापन सत्र है कहने के लिए, लेकिन आज हम इसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं, और आप सभी इतने समय से 3 दिनों से जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपको बहुत लाभ भी हो रहा होगा, क्योंकि अरावली की श्रृंखला में बसा हुआ यह ज्ञान सरोवर अपने आप में एक बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है, और जहां पर आकर सभी लोग फिर से फ्रेश हो जाते हैं। तो एक बार इस ज्ञान सरोवर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि बिना देर के आज अपने जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनको मंच पर हम बुलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले आज के जो हमारे चेयरपर्सन, हमारी अध्यक्ष राजयोगिनी BK अंबिका दीदी को मैं चाहूंगा कि स्टेज पर आएं और स्टेज की शोभा बढ़ाएं। साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस रिव्यू देने के लिए BK डॉक्टर सुशील चंद्रा, आप भी पधारें ब्रदर। आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी, फॉर्मर VC वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार, और गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए डॉक्टर विजय कुमार सैल्विया, श्री US तनेजा, आप भी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, प्लीज आप भी स्टेज को की शोभा बढ़ाएं, डॉक्टर सुहास कुलकर्णी, क्या आज थोड़ा सा परिवर्तन है, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी जो आज के चीफ गेस्ट हैं, आपको हम चाहेंगे सर सम्मान आप मंच पर पधारें और एक बार ताली से पूर्वे जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी अंबिका दीदी, हमारे श्रीकांत भाई, अलका दीदी गाइडेड मेडिटेशन हमारे बीच में रखेंगे, और आदरणीय संजय भाई आप सभी स्टेज पर स्टेज की शोभा बढ़ाएं, और आदरणीय दीदियों से मैं चाहूंगा कि आप इनका बुके और बैजेस से स्वागत करें। ऑनरेबल डिप्यूटी चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार डॉक्टर पूर्वे जी का सम्मान हुआ, बहुत अच्छा। डॉक्टर विजय कुमार सैल्विया, डॉक्टर सुहास कुलकर्णी और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर के श्रीकांत भाई, इनके लिए तो जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद हम सभी 3 मिनट प्रभु स्मृति में बैठकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। हमारे बीच में बीके शिरीन बहन का भी मैं आह्वान करूंगा, टिम्पा यूएसए से आप भी हमारे बीच में आएंगे। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बीके डॉक्टर सुशील चंद्रा को आह्वान करता हूं। आपने इनका परिचय लिया है, फॉर्मर एसोसिएट डायरेक्टर इन मास डीआरडीओ न्यू दिल्ली। पिछली बार भी ऐसे ही चल के आए थे, इस बार भी ऐसे ही चल के आ रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे फिर। थैंक यू।
थैंक्स अनुज भाई फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिग्निटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई विल बी शेयरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस विच इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट 3 days. And the conference started with the reception and inaugural session with a self-talk and dance by Sister Jaya and Palak. And then after that, our Rajyogini Saroj Ben, who is the zonal coordinator of Spark Wing, heartily and spiritually welcomed the esteemed delegates on the stage and off the stage. She laid emphasis on the fact that knowing the self help in understanding others also. Then the event provided me an opportunity to give a brief sharing about the Spark activities, which are mainly research and which is being done with the help of collaboration with multiple institutes nationally, internationally, for example, DRDO's institute like DRPR, DIPAS, NIMHANS, ISIC, and even including University of Zurich. Being the chairperson of Spark Wing, Rajyogini Ambika Behan stated via the aim and objective of the conference, clarified that science has reached its peak to contain the world into a global village. However, due to exploitation, ego issues, the synergy is not being established. Spirituality is the only solution to put an end to all these problems and to re-establish harmony in the society. And then a video clip conveying blessing by the chief of BKs, Rajyogini Dadi Ratan Mohini ji. She also showered her sweet, spiritual and kind blessing for the success of the conference and also to all the participants. Then Rajyogini Dr. Nirmala Didi, who is the joint chief of the Brahmakumaris, with her lucid talk, inspired the August gathering and requested the delegates to establish a connection with the spirituality so as to enhance the quality of their life. Good wishes was delivered by Rajyogi Mrityunjay Bhai, who happens to be the chief executive secretary of Brahmakumaris, and through his lively note filled the audience with zeal and enthusiasm, where he subtly touched to have true earning through right purpose of life. In the inaugural address by Dr. Purve, Honorable MLC Bihar expressed his delight to be associated with different wings of Brahmakumaris like education, political, spark, and present BK simple knowledge and benefits derived out of meditation and its different forums. Special guest Padma Vibhushan Awardee Dr. Raghunath R. A. Mashelkar, former DG CSIR, President GRA and Chairman INIF Pune, said integration, inclusion and innovation is important for Bharat. He said, other than Mashelkar, he is also called as Patentkar for his contributions and initiatives. He emphasized the need to explore the inner space while performing endeavors in pursuit of external comforts. Then Professor Avinash Chand Pandey, Director IUAC and IUCYS, Delhi, via his greetings, asked the audience to consider the human body as a laboratory to perform experiment, experience the truth, the life, energy and blissful state. And then vote of thanks was proposed by Dr. Kantilal Nagre, core group member of SPARC Maharashtra. Then the next day on 16th, in plenary session 1, which was on a spiritual reality mission, missing dimensions in research and development. Again, by the chief guest, Padma Bhushan, Dr. Mashelkar, who said that being at this spiritually enlightened place would add years to my life. Though his personal experiences, he beautifully opined that with the power of concentration, anything can be achieved. He coined the term convex lens leadership to integrate different laboratories working in the silos. The healing property of turmeric tradition of Bharat inspired him to stand against USA, who were trying to keep the authority of its patent. He was privileged to put his signature in the same book as Newton, which indeed was a spiritual experience which he shared. Then the guest of honor of that day, Dr. Avinash Chand Pandey, stated that Bharat is the foundation of yoga, meditation and spirituality, mentioning about the impact of experiment at the three layers of mind, gross thought level, subtle feelings and emotions, and fourth is the life operating system. Then Mr. Parthasarthi Mukherjee, who is the CTO of Saddle Systems India and USA, said that by going within, we get answers to everything. He quoted an example of Ramanujam, one of the greatest mathematicians, used to get the insights from his family deity. The greatest scientist Einstein too always did thoughtful experiments and never the practical experiments. Then the keynote speaker of the day, Dr. Ram Jain, scientist G at Center of Consciousness Studies, Department of Neurophysiology in IMHANS, Bangalore, establishing a beautiful link between science and spirituality. He told Newton was not only scientific, but also equally spiritual. Spiritual reality is a missing dimension in today's date in R&D. To incorporate it, firstly, the change in perspective is required. Secondly, practice, as non-physical things can only be experienced through practice. Then the plenary session 2, which was on a spiritual and emotional well-being for excellence. In that, chief guest, Dr. Ashok Mehta, who is the chairperson of Brahma Kumari's medical wing, stated that biomedical equipments can access and observe any part of the human body. He gave insight on the effect of stress called fight and flight response syndrome. He stated that when in fight and flight response, the bodily changes like BP, pulse, and this goes up, and when a person meditates, it gets a completely reversal. Then the keynote speaker and guest of honor, our Raj Yogi Surya Bhai, who is the senior Raj Yoga teacher, posed a theoretical question as to why humans have become emotional and sensitive. He revealed the insights and importance of the power of subconscious mind, which has immense power, which need to be channelized. He explained the direct correlation of an emotional person in anger, and he shared doctor's information: when one is happy, brain neuron starts dancing. Then guest of honor, Dr. Bhavna Sharma from AIIMS, she told that new drug development, how much time it takes. It takes more than a decade. She mentioned about adjustment therapy, which integrates spirituality in regular treatment process. Then panel discussion 1 on topic nature. Is it fictitious or futuristic? Dr. R.K. Dhar, professor from Jagannath Institute of Management School, stated that we have created a binary nature between nature and a man. Man exploited it, nature, and now once it is showing its reflection, we are bothered about it. So that's a paradox. Then Rajyogini Saroj Didi told in her simple way that human nature is what we desire, and innate qualities, love, happiness, bliss, which is actually the original nature of the soul. Then Dr. V.N. and Satya Suresh, who is a professor of mechanical engineering in MGITM Hyderabad, stated that no purpose is served by blaming nature, as it is moving from a state of orderliness to disorderliness, as it's a law of thermodynamics. And then he explained how to bring it back to the orderliness. Dr. Sunita Chaudhary, who is a scientist of Crop Physiology Laboratory, stated the couple of reasons for nature being ferocious. One of the reasons was population explosion, indiscreet human intervention, etc. Then she shared that the research where spirituality also can solve the issue related to agriculture part also. Then the technical session, in which paper were presented by multiple stakeholders. I will talk only the name because Anuj is already waiting for. So Dr. Kanesh Sharma stated, then Sister Ekta Ben, then Professor Ramesh Babu from Manipal College, then Professor Brijesh Chandra, he spoke about science and spirituality in a hybrid social order, Dr. Deepti Joshi, Dr. Shikha Vishwakarma, Manisha Abdethia, research scholar, Mrs. Renka Jakar, and Dr. Kavita Sharma, Dr. Rinkush Vishnu Kurkre, and Dr. Sarvesh Kumar from IUAC again, and then Dr. Piyush Ranjan, who spoke about effect of Raj Yoga on thyroid function. Then the next day started. I'll take 2 more minutes. Then plenary session on exploring the unexplored dimension of life, where the keynote speaker, our Rajyogini B.K. Ambika Ben, eloquently spoke about experiential eternal truth through introspection and driving within.
And she told, meditation is a time-tested method to stay connected to the self. Thoughts work at three levels, conscious, subconscious and unconscious. The deepest level is the unconscious level. Then the chairperson, Dr. Amud Sachan, life coach at Amud Foundation, Lucknow, told about in the medical field and spirituality, there is a good combination. He told about virtues, seven virtues and eight powers also. Then guest of honor, Dr. Mahendra Pratap Singh, Member Secretary, Indian Council of Philosophical Research, introduced himself as a lifelong humble student of philosophy. Then plenary session, developing resilience to face challenges, in which our again keynote speaker Suraj Bhai explained the effect and power of thoughts. Then the chairperson, Dr. Rajarao Padigalai, Chairman Vishwa Humanity, he told about their campaign. He then spoke of the unique inner qualities also. Then the plenary session applied spirituality, shift from fixed mindset to growth mindset, where our keynote speaker was Balakishore Bhai from Spark, Hyderabad, mentioned that in fixed mindset, the belief is failure, reflects a lack of intelligence, while in case, if you, who I think I am, how I look at the world and what I find, so based on all these factors, we can create the growth mindset. Then the chairperson, Professor Dr. Alok Mishra, cited through examples of Mohenjo-daro and Harappa civilization. Then our guest of honor, Shri S.B. Taneja, who is the director of ISSA, one of the lab of DRDO, also shared about his views related to fixed and growth mindset. Then the plenary session 2 of that day, impact of Raj Yoga on Moon Singh's and mental health of youth, where our expert panelist, Dr. Pratap Midha, who is director of Global Hospital and Research Center, attributed the cause of today's atrocity, negativity, to instability in the mind. And then he explained about Swast, how with the connecting with the self, we are able to change our thought patterns and can bring back our health. To a question, whether lifestyle can be changed to have a positive impact on youth? Yes, then he shared about his views. Then expert panelist Professor Brijesh Chandra mentioned that the real education is how to respond. Formal education has no correlation with the true knowledge. Then to a question, he answered, he shared his experience with BKs, who taught him the basics of maintaining the relationships through psychology. The expert panelist, Pradeep Malhotra ji, who is our core group member of SPARC, who is a life skill trainer, used the science of ontology to depict the transformation from unstable to stable. To a question on overusage of modern technology and exposure to electronic gadgets with the youth, he shared how we can connect with the self and the supreme, and how we can have the balance between the life and the spirituality part. So while I thank the august delegates for the patient hearing, I conclude with the hope that all of you who have taken precious time to be here would spare no efforts in taking forward the spiritual aspects that you have got exposed to you. Thank you. Om Shanti.
थैंक यू सो मच सुशील भाई. अभी एक विशेष सूत्रों से पता चला है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में मेरा एक स्पीच है और उसमें 1.25 मिनट मुझे मिलने हैं. इसमें सारे जो गेस्ट्स हैं सबके मिनट्स प्रोग्राम में बने हुए हैं, लेकिन मेरा एक भी मिनट नहीं बना हुआ है. तो मुझे आप सबसे 2-2 मिनट, 1-1 मिनट चुराने पड़ेंगे. तो कृपया अपने मिनट्स का ध्यान जरूर रखें. तो 1.25 मिनट हम आपसे लेना चाहेंगे. एक बार सुशील भाई के लिए जोरदार ताली. और अभी मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में शिरीन दीदी हैं, आप इनका बुके और बैजेस से एक बार स्वागत करेंगे. और साथ साथ मैं आज के स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी जी को निमंत्रित करता हूं। आप फार्मर वीसी वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार से, और आपने ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोमोटिंग रिसर्च इनिशिएटिव डॉक्टर प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी। थैंक यू सो मच सर।
सम्मानित मंच और सभागार में प्रतिष्ठित सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं एक अदना सा आदमी जो आपके समक्ष खड़ा हूं। लगभग 40 वर्षों तक मैंने अपना शैक्षिक जीवन व्यतीत किया है, और इस अवधि में भारत ही नहीं विश्व के कुछ विश्वविद्यालयों में संपर्क किया है, उनको जानने समझने की कोशिश किया है, लेकिन आज तक हमने एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं देखा जहां पर छात्रों से पढ़ाने के लिए ट्यूशन फीस न ली जाती हो, जहां पर उनके खान पान की, रहन सहन की, चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था की जाती हो। पहली बार हमने यहां आकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक ऐसा एकाकी और अद्वितीय विश्वविद्यालय पाया जहां अपने सभी छात्रों के रहने, सुंदर सुस्वादु भोजन प्रदान करने, यातायात और चिकित्सीय व्यवस्था की निःशुल्क व्यवस्था है। जिन आत्माओं ने इस तरह के विश्वविद्यालय की संकल्पना की और उसके लिए एक आर्थिक प्रबंधन का नियोजन किया, मैं अपनी तरफ से उस व्यक्ति या उस आत्मा के प्रति अपने सिर को झुका करके प्रणाम करता हूं। पिछले 4 दिनों में मैं इस परिसर में जहां कहीं भी जो देखा, इस सभागार में बैठ करके जो कुछ मैंने सुना, उसमें अनुशासन की जो स्थिति, व्यवहार की जो स्थिति हमने देखी, एक भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर रोब गांठते हुए नहीं दिखा। हालांकि विश्वविद्यालयों में, जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, वहां पर भी प्रेम की गंगा जमुना प्रवाहित होती है, लेकिन इस परिसर में भाई और बहन के रूप में जो प्यार का एक संचार होता हुआ हमने देखा, वो अपने आप में एक अद्वितीय है। सभी लोग जानते हैं कि एक डॉक्टर के यश का वर्धन उसका रोगी करता है, एक वकील के यश का वर्धन उसका मुवक्किल करता है, एक शिक्षक के यश का वर्धन उसका शिष्य करता है। तो मैं यहां पधारे हुए सारे प्रतिभागियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप यहां से वापस जाएं, तो अपने संस्थान में, अपने शहर में, अपने गांव में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषताओं की चर्चा अवश्य करें, और जब इसका यश चारों तरफ समाज में फैलेगा तो यह शायद मानवता के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी। इस अधिवेशन में मुख्य चिंतन के 2 बिंदु रखे गए थे, एक अध्यात्म, दूसरा विज्ञान, और दोनों का कर्ता मनुष्य है। हम हैं, आप हैं, हमसे और आपसे इतर बाहर जो लोग हैं, वो सभी कोई उसमें से एक या सब मिलकर के अध्यात्म का सृजन करते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। अंतर क्या है? अंतर केवल ये है, अध्यात्म का सिद्धांत किसी एक व्यक्ति के गहन चिंतन की चरम पराकाष्ठा से बनता है, और एक वैज्ञानिक उसका 2 गुना मेहनत करता है। पहले वो समस्याओं पर कंसंट्रेट करता है, फिर उसके गणना के लिए उपकरणों का निर्माण करता है, और उपकरणों के द्वारा की गई गणना के आधार पर वो वैज्ञानिक सिद्धांत बनाता है। अब उपकरण तो बनता है मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा, तो वो उपकरण मस्तिष्क के ऊपर कैसे जा सकता है? यही कारण है कि जितने वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, वो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चिंतन को नापने में आज तक असफल हुए हैं। जीव शरीर छोड़कर किस गति से बाहर जाता है, आज तक कोई नाप नहीं पाया। मोक्ष की, निर्वाण की क्या स्थिति है, जिसका सन्यासियों ने निधिध्यासन किया था, वो कैसा प्लेजर है, उसका कोई आज तक चित्र नहीं बना पाया, उसका कोई श्रव्य नहीं बना पाया और उसका कोई यूट्यूब नहीं बना पाया। ये अंतर है, ये चैलेंज है वैज्ञानिकों का और आध्यात्मिक उपलब्धियों के बीच में भौतिकता के स्तर पर उसको उतारने का। अपने देश में एक बड़ी लंबी साहित्यिक परंपरा रही है, वो परंपरा वेदों से शुरू होती है। वेद बने थे ब्रह्मचारियों के लिए जो उसमें ज्ञान का अर्जन करें, गृहस्थ आश्रम में धर्म और कर्मकांड का पालन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, वानप्रस्थियों के लिए आरण्यक साहित्य का सृजन किया गया था और जब संन्यास आश्रम में व्यक्ति पहुंचे तो चरम तत्व की प्राप्ति के लिए उपनिषद जो वेदों के अंतिम भाग थे उनका सृजन किया गया था। अपने पास 108 उपनिषद हैं जिनमें गंभीर चिंतन भारतीय दर्शन का विशद विवेचन किया गया है। इन ऋषियों ने जो इनमें तत्व चेतना उपलब्धि आत्मा ब्रह्म परब्रह्म सब का जो विवरण प्रस्तुत किया है उसको वैज्ञानिक विधि से सत्यापित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती आज वैज्ञानिकों के सामने है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में वो चिंतन को भौतिक स्तर पर वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे देश में जो विपुल साहित्य है उसमें पुराणों में तमाम संचित ज्ञान है और ऐसा ऐसा विज्ञान उसमें भरा पड़ा है जिसकी हम चर्चा करेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। यहां पुराण इस बात का उल्लेख करते हैं कि यज्ञ नामक एक संस्था थी और उसमें मंत्रों का प्रयोग होता था। वो मंत्र इतने प्रभावशाली थे कि एक सरकंडे की बड़ी तीर में मंत्रों से शक्ति का जब प्रतिष्ठान कर दिया जाता था तो वो बड़े बड़े शस्त्र बन जाते थे और महाविनाशकारी हो जाते थे। एक धनुष की प्रत्यंचा से उसकी नोक से लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी मंत्र के अभिधान के द्वारा जो लक्ष्मण रेखा बन गई और उसको परम पराक्रमी रावण भी पार नहीं कर पाया। यहां के जो विज्ञान था यहां का जो ज्ञान था उसमें अवस्था को ट्रांसफर कर देने की विधा थी, आयु को ट्रांसफर कर देने की विधा थी। राजा ययाति को इस तरह का एक अभ्यास उन्होंने किया था, अपने बेटे पुरु से उन्होंने आयु को ट्रांसफर कर लिया था, बाद में उन्होंने उसकी युवावस्था उसे वापस भी कर दी थी। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे, उनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, उन्होंने ये ज्ञान शिव से ग्रहण किया था और बृहस्पति के पुत्र कच्छ को उन्होंने हस्तांतरित किया था। लेकिन शुक्राचार्य की लड़की जिसका नाम देवयानी था उसने उससे प्रणय का प्रस्ताव किया जिसको उसने स्वीकार नहीं किया तो उसने श्राप दे दिया कि जो तुमने ये मृत संजीवनी विद्या सीखी है भविष्य में तुम्हारे काम नहीं आएगी। ऐसी इस विद्या को वो वैज्ञानिक जो परमाणु बम बनाए हैं और उसकी गोदाम पर बैठे हुए लोग उसको व्यवहार में लाने के लिए आतुर हैं, कहीं अगर इसका प्रयोग हुआ और सृष्टि का विनाश हुआ तो इस मृत संजीवनी विद्या को पुनर्स्थापित करके आज के वैज्ञानिक अपना विष्णु स्वरूप स्थापित करेंगे, हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, ये मैं आशा करता हूं। बहुत सारी बातें कहनी थी लेकिन समय का अभाव है। मैंने यहां चार दिन के अधिवेशन में जो परंपरागत दार्शनिक विचार हैं उनको उनमें थोड़ा सा परिवर्तन व्याख्यापित करते हुए देखा है। वो ये देखा है कि आत्मा को हम अपने को आत्मा मानते हैं जो यूनिक है और पावरफुल है, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट यहां उभर कर आया। हमारे यहां पुनर्जन्म की कर्म की कर्मफल की अवधारणा है लेकिन इस संस्थान ने जो एक नया मत प्रस्तुत किया कि मृत्यु के बाद कर्मफल के अनुसार 84 योनियों में भटकना पड़ेगा वो उन्होंने नकारा और कहा कि हम मनुष्य योनि से ही अगर मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो पुनर्जन्म हमारा मनुष्य योनि में ही होगा। ये एक बड़ी आस्था की बात है। यहां ध्यान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है जिसे मन को नियंत्रित करने का साधन माना गया है। ये चिंतन आशावादी है, ये सतयुग के आने में विश्वास करते हैं, प्रकृति के संरक्षण में इनका बल है, ये पारस्परिक प्यार को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं यह पंथ या चिंतन धर्मनिरपेक्ष है, मानवतावादी है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं जाते जाते परम प्रभु शिव बाबा से ये अनुरोध करेंगे कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दिग्भाग् भवेत्। ये संदेश पूरे विश्व में प्रसारित करें और ऐसा ही हमारा ये समाज बने। ओम शांति।
प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन परमात्मा के लिए अनुरोध करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कहा जाता है, न वो गिन कर देता है, न वो तौल कर देता है। वाह वाह बोलेंगे। न वो गिन कर देता है, न वो तौल कर देता है, जब शिव बाबा देता है तो दिल खोल कर देता है। तो प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने तारीफ की, तो एक बार हम चाहेंगे कि आप भी संस्था में जरूर जाएं, कोर्स एक बार पुनः करें। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में यूएस तनेजा जी हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर। आप फॉर्मर जनरल मैनेजर हेड ऑफिस CLPSU, आपका इतना ही बायोडाटा मेरे पास है, स्वीट एंड शॉर्ट। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे भाई साहब के लिए।
जहां तक बायोडाटा की बात हो, तुम आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया हमें, ये तो सब ड्रामा है। ठीक है, सॉरी। पहले तो मैं आदरणीय डिग्नेटरीज, बेंच एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ पर, और काफ़ी चीज़ें अच्छी देखी मुझे, मन में जैसे वाइब्रेशन सी हो रही है, तो ये फीलिंग है मेरे में। उधर दूसरा, इमीजिएटली तिवारी, प्रोफेसर तिवारी से आई एग्री विद इट दैट ही सॉ ऑल गुड। इनफैक्ट इट वॉज ए रियली, आई सॉ द ऑर्डरलीनेस इन ए नेचुरल वे। And the administration, you appreciated the administration, but I don't know who is administering here. I never saw anybody who is administering, asking, telling anything to anybody. That's what really pinched me, because in offices we put a lot of effort to get the work done, or get the various organization in a streamlined way and all that. And a lot of senior people put efforts. Here really it was looking as a natural family, big family. And it's really give me a lesson also and learning also, and everything I'll keep in mind. Second is the topic was linking science and religion and all this what we heard in last 3 days. It was really eye opener. One of the thing which opened my eye when I entered the dining hall, caption was return to source, something like that. Return to source. So, in first instant, I couldn't get this word, but when I attended these lectures 2-3 days, it really opened my eyes. That means it appears to me that return to source is the ultimate goal. In fact, yesterday there was a presentation on Paramatma definition in a very logical way. The way we academic lecture we give. In a scientific way, we prove the things, hence proved and all those things. It was looking, that presentation was something like that. There were steps and then finally hence proved that Paramatma, this is the right definition with all qualities and things like that. So, from there also one can see the ultimate goal, ultimate knowledge. What I found is this only, what I got in 3-4 days. Of course, I have been mostly in the production system. Manufacturing line. So I started correlating all these things with my production system also. So the way, in fact, Paramatma or what concepts I captured from here, that it is a customer also and a source also. It is a supplier also and customer also. That way we have to keep on producing the thing which ultimately the customer wants. That is what is how the quality works. So this is a cycle, it appears to be what in this adhyatmic way also what I saw can be linked in that way. And in the process of this production system, the inventories should be minimum. Means bad inventories normally we eliminate in a samsaric way. There also it is what is taught that your inventory, bad inventory is inside you, what the way we do, how we can remove all those things is Raj Yoga and other concepts which we captured. Anyway, I think one, two Raj Yoga, my mind vibrated, in fact. So it really works. And I think I'll further practice it, and I rather plead everybody to, wherever you get a chance, to do this last Raj Yoga I did. It was really warming me. So it will definitely achieve the goal of the purpose of life or whatever we learned here. And scientists, if I recall, when I was doing my graduation in science in Delhi University, Dr. Emeritus Professor Kothari used to teach one subject, astronomy. And I used to ask a lot of questions in the class, just used to sit in the front row. So when he was teaching, how the universe was formed, and a lot of theories, in short, I'll say the Big Bang theory, another thing, and a lot of formulas in the astronomy subjects were derived logically. But everything, okay, then finally experimentation was explained, and finally told, yes, it's correct, this is the theory is right. But when he used to close the lecture, I said, you started with the assumption. They make some hypothesis, like in any scientific investigation, we'd make some hypothesis and formulate a theory formula and verify in the lab. If it works, then we say it become an established theory. So there they asked, we started the formula with the assumption there was a dust. I remember the word still, dust. And then from dust, he started all the derivation and a lot of quantum mechanics and other things entered into the picture. And he could not explain how this dust came. If everything is okay, all the dynamics, we have dynamic formulas are created, and it is giving how the whole thing is working. That is okay. But you start with the assumption that also you are proving that the dust was there. Who created the dust? From where the dust came? So that was the origin. No, he couldn't answer. He was, and then he rather called me at home. He said, come in the evening and discuss. And all those, I recalled all things here. So that shows they are science people also, scientific, have curiosity to know. That's why a lot of research is still going on, research on God particle and all things. Invisible, say God invisible, he's not visible. So this also can be explained scientifically from various quantum mechanics theories and others are there. Where they say this, as you go smaller and smaller, smaller, some more energy comes. It has more power. That is the ultimate power is God. Ultimate power that also proves that there are a lot of accelerators in America and in India also. There are certain research centers are having that facility to research on God particles. That means the curiosity is still not fulfilled. It is still going on. So that shows we have to have faith in this. And that is the ultimate which we can continuously. Even the rebirth theory, that also can be linked with science, which I can say conservation energy, simple way one can take that way. It's the energy ultimately, vibration we are talking. Thinking is a vibration. So vibration, we are tuned with our God's frequency, then only you can realize. So those things are all scientific. There is nothing, that means there is a reality in it. There is definitely science and a whole universe creation, there is a linkage. So I think all science and religion, they are mixed now. Though as the Indian historically we see, Rishi, Munis, they all knew everything. Even we study a lot of Purans and Kathas, Hanuman flew and that, all those, that means there was some thinking in Rishis also, which we don't know. We have very limited knowledge. So as far as these concepts are there, all are linked with the science. That's only what I want to stress. So finally, I'll thank for giving me a lot of knowledge here. I learned and I hope I'll keep continuing, understanding more and more and go on linking with this.
आप सब इतने दिल के अच्छे हैं तो परमात्मा ने आपको देखो कितना दिल से यहाँ पर बुलाया है तो इसके लिए एक बहुत सुंदर बात समझ में आई कि जो दिल का खूबसूरत हो परमात्मा ने ऐसे लोग ही बनाए हैं एक बार वाह वाह बोलेंगे सभी जो परमात्मा जो कहते हैं जो दिल का खूबसूरत है परमात्मा ने ऐसे लोग ही बनाए हैं उनमें से आप सब कुछ लोग हैं जो इस सम्मेलन में आए हैं तो So thank you so much. हमारे तनेजा भाई साहब बहुत अच्छा बोला आपने। अब मैं देर ना करते हुए हमारे एक और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुहास कुलकर्णी को अपने पास बुलाना चाहूंगा। आप पेटेंट ऑफिसर हैं वेस्टर्न जोन इंडिया के, प्लीज कम फॉरवर्ड डॉक्टर सुहास कुलकर्णी। इनका भी बायोडाटा बड़ा छोटा सा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे बायोडाटा से समय बचा रहे हैं, पौने एक मिनट हमको मिल जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, ताली बजाएंगे इनके लिए।
ऑनरेबल ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, लास्ट थ्री डेज आर एक्चुअली एन आई ओपनर फॉर मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज माई वेरी फर्स्ट स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस वेर आई एम टॉकिंग, एल्सवेयर आई एम लिसनिंग, बट आई अटेंडेड लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज वेर एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑल्सो, एंड आई स्पोक देयर इन द लेंथ, बट वेन आई बी हियर एंड Shikanji has called me to be here as a speaker or a guest of honor, I was very surprising that what I'm going to talk and what I'm going to ask them. But last 3 days when I'm experiencing the things here, it really makes me to see inside me. Last 3 days I've been carrying out the Raj Yoga. First 2 days, very honestly, bouncer for me, I couldn't understand anything. But today I followed something and I really feel that there is something that I can search out inside me. But very honestly, what for I am here and what I am talking now is the two, three distinct things I am trying to club together, and it may be an hour, a need of an hour if you understand and follow. And some of you may not be agree that these three things can be clubbed together. For first two things, that the spirituality and the science, most of you may be agree that the spirituality is being followed by the science and the science is deeply embedded into the spirituality, where it can be understood by last 3 days presentation. Most of the presentation, particularly the technical session, if we see that, some papers have been come out to decipher the a philosophy, spirituality in the way of the science. A lot of medical devices or medical tools has been used to decipher the effect of spirituality on the right side of brain or left side of brain or entire brain itself, on the behavior of the people and what exactly happens by any way, what are the means of being used for deciphering that, or the goal to achieve the spirituality. Apart from that, there are two more very more interesting papers which has been coming out from the spirituality, that the time of a yoga, that what time has been most suitable for that. And when we see these things together, then we'll understand that there is a science behind the spirituality, and this science has been actually the tool to decipher the effect of the spirituality, or to convert the spirituality into the physical form and to understand it in better way. I think some of you may be agree with that, or some of. But third thing which I am trying to club it together is the term, is the field of law. Because I have the qualification in the science as a doctorate, and I have been completed my LLM also. So the job I am doing here at the office is actually I am binding the science by the law. Whereas here what I am trying to understand or try to see, that when the spirituality is being clubbed with the science and something is coming out, then why not it is being clubbed together as a law. There is a special branch of law which deals with this, that has been called as the intellectual property right. Some of you may have been hear the word intellectual property rights. Mostly when Mashalgar sir was here, then I think the most of you hear the word patent. Patent is nothing but a form of the intellectual property. And apart from that, apart from the patents, there are different other forms of the intellectual property also, such as the copyright is there, trademark is there, even the designs is there. Where, how these things has been clubbed together with the spirituality and the science? Of course, the science has been totally and totally been overwhelmed by the intellectual property rights, whatever the scientific experiments or scientific results are coming out, that has been protected as an intellectual property right. But when it comes to the speciality, as I said, that the speciality and the science are truly interconnected to each other. When you decipher the results, when you carry out the different types of meditations, then some sort of the creation takes place, and that creation is nothing but the form of the intellectual property coming out of this. I don't know what's the policy of the university here for the intellectual, protecting the intellectual property, right? But if we see in the past, then we understand that lot of intellectual property is being drained out of India into the Western world, and the people, not only our own people, has registered these intellectual property there in that countries and exploited it, but the overseas people also did the same and make it the lot of different difference to the intellectual property, which has been inherently of the Indian origin. A lot of yogic things are there, a lot of meditation techniques are there. It's not only the patent is not necessarily there, the other forms of the intellectual property can be also been exploited, like copyrights and other things are there. So today when I try to find out that what the policy of the universities, today morning I've been downloaded the app, which is the Brahma Kumaris app, which is present in the Google Play Store. And that Play Store app, when I seen that today's Murli was there, and I read that Murli, and at the end there was a copyright mark is there, and it must be have been protected. But that app is from the Brahma Kumaris UK and not from the Brahma Kumaris India. So I think that the university should look into that, and before it get to the too late to understand or whatever been created, whatever been yogic position or the meditation techniques and the tools or the different mediums which has been used there need to be properly protected. I think been just sensitized on the issue, what has been there, how the intellectual property and the science and the speciality can club together. Anyway, thank you very much.
थैंक यू ब्रदर. आप सारे पॉलिसीज के बारे में भाई साहब से मिल सकते हैं. श्रीकांत भाई जी आपको बताएंगे कि कैसे पेटेंट करें. पहले आप पेटेंट हो जाएं हमारे यहाँ एक बार. तो सबसे पहले जब आप पेटेंट हो जाएंगे तो पेटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा. एक छोटी सी बात मैं सुनाना चाहूंगा. हमारे जो डॉक्टर मानवेंद्र सिंह यहाँ पर बीच में बैठे हैं हमारे, और कल ये कह रहे थे वी यूज टू गो टू द टेम्पल, हनुमान मंदिर जाते रहते हैं. तो ऐसे ही खाने पर मैं जा रहा था, ये रियल रिसर्च वर्क है. तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो, मतलब इसी में से कोई था, इसमें दिख नहीं रहा है. सो मैंने कहा बैठे बैठे तो नहीं करते भाई, खड़े खड़े करते हैं, चलते फिरते करते हैं, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं करते. कहते नहीं, आपने आज तक रिसर्च में क्या किया है, चंद्रयान तो अभी गया और यहाँ इतने सारे रिसर्चर्स को आपने बुला लिया, आप कर रहे हैं. तो थोड़ा वो उनको शायद हो सकता है कि बीकेएस के प्रति जो भी हो. तो मैंने कहा हमने तो बहुत पहले रिसर्च किया, क्योंकि डॉक्टर मानवेंद्र सिंह की ऐसे स्पीच सुन के ही मैं जा रहा था. तो कहते क्या, मैंने कहा अगर हनुमान अष्टक आपने पढ़ा हो तो उसमें है बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधि. एक साथ बोलेंगे सभी आपने, अगर जिसने भी हनुमान चालीसा पढ़ा है. So, कहते हैं बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारा. कहते उस समय कहते यहां से पता नहीं 1,00,000 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य था, उसको तो जाके हनुमान जी ने पहले ही खा लिया. और सोचो रिसर्च में हम चंद्रयान पर आज जा रहे हैं, हनुमान जी सूरज पर पहले पहुंच गए. और दूसरी बात एक सबसे अच्छी कि सारे कहते हैं देवन आन करी विनती तब छाड़, मतलब सारे देवताओं ने अंग्रेजी में आके वी आर सॉरी बोला तब हनुमान जी ने मुंह खोला. तो वो चीज इतनी अच्छी आपने बताई डॉक्टर मानवेंद्र सिंह का, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने उनका आंसर दे दिया. कहते जी अब अपना प्रश्न कोई नहीं आपसे पूछूंगा. तो इस तरह से उनके प्रश्न का उत्तर मिला. थैंक यू सो मच उस व्यक्ति का भी और आप सबका भी, आपने इतना अच्छा हमें बताया.
और हमारे एक और अगले गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर विजय कुमार सेल्विया। आप इनका परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं, आप सुर भी लगाते हैं और सुबह भी आपने मेडिटेशन कराया, आप सबने इनको सुना ही है। तो डॉक्टर विजय कुमार सेल्विया एक ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर फॉर रिसर्च इनोवेटर स्टार्टअप यूनिवर्सिटी हैं। आप लेजेंड ऑफ स्टार्टअप हैं, इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे टैलेंट हैं इनके अंदर। और एक जो मेन इनके जो क्वालिटी है, इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान के आप रहे हैं, तो इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। डॉक्टर साहब टाइम का ध्यान रखेंगे।
ओम शांति। मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और इस हॉल में उपस्थित सभी अति महानुभाव, वो इसलिए क्योंकि आज के जमाने में 3 दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लास करना ये अति महानुभाव ही कर सकते हैं। तो इस 17वीं नेशनल SIR कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ आपने सुना, मैं वो सब रिपीट नहीं करूंगा। मैं करूंगा थीम से रिलेटेड, करना क्या है, हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, मिलके क्या कर सकते हैं। अब स्पार्क विंग जवान हो गया है, युवा हो गया है, स्वीट 16 स्वीट 17 की ओर बढ़ गया है। तो ये मान के चलो कि जो जवानी में खून का जो रोब होता है वो अब स्पार्क विंग में दिखने वाला है। तालियां बजा दो। श्रीकांत भाई के बारे में कल परसों किसी ने कहा था कि इनकी मानसिक एज 80 दिखती है, लेकिन मुझे इनकी फिजिकल एज 20 से भी कम लगती है। 16-17 जैसे बिल्कुल यंग तरुण लगते हैं वो, मैं शुरू से देख रहा हूं, पिछले 15 साल से ऐसे ही हैं वो, हालांकि मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूं। तो 1983-84 में मेरे कदम पड़े थे इस पुण्य क्षेत्र में और अनुभव तो मेरे वैसे ही रहे हैं जिंदगी के, जो एक नॉर्मल आदमी के रहते हैं। ईश्वर ने, बाबा ने संभाला है और वो सब डिस्कस करने का समय नहीं है, लेकिन एज अ इंजीनियर रिसर्चर और PhD मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत सारी चीजें, 64 कलाएं और 16 सेंसेस के को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ा रहे, खुद भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैं वशिष्ठ आश्रम गया, अभी ये पुण्य कार्य मुझे अभी इसी कॉन्फ्रेंस में आने के पहले प्राप्त हुआ, तो मुझे पता लगा कि वहां की जो हिस्ट्री है ये तो रामकृष्ण तो पहले ही आके चले गए यहां से, हम राम राज्य की बात करते हैं, कृष्ण राज या विष्णु राज की बात ही नहीं करते। तो राम राज्य मतलब जो ऐसा राज्य जो जिसके गुरु वशिष्ठ थे, वो पुण्यकारी क्षेत्र यहीं पे ही है, और उसके वहां पे जाना नीचे और ऊपर आना मेरे बस की बात तो नहीं थी, लेकिन बस ऐसा लगा कि मेरा कोई पुराना रिश्ता है तो मैं चले भी गया, और कोई महानुभाव मिल गए थे मेरे से और बुजुर्ग, तो हम दोनों मिलके उस नैया को पार कराए। और वहां जब मैंने उसकी हिस्ट्री देखी तो पता लगा कि यहां पे वरदान है कि 80,000 से ज्यादा ऋषि रोज यहां तपस्या करेंगे, और ये ब्रह्मा कुमारी उसी का ही वरदान है कि यहां रोज इतने लोग तपस्वी आते हैं जाते हैं, तो ये षष्ठी तक चलता रहेगा। ताली बजा दो। तो मुझे ये बहुत मतलब क्या है कि देखा जाए तो बहुत कुछ बर्बाद हुआ है पिछले 10 ये बार के चलो 1000 साल में, उसके पहले तो बहुत कुछ था। तो अब हम जब स्पिरिचुअलिज्म और साइंस की बात करते हैं तो रिसर्च इनोवेशन स्टार्टअप यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जिस भी क्षेत्र में हो, हम स्प्रिट टेक्नोलॉजी को एक चालू करेंगे, स्प्रिटो साइंस को चालू करेंगे, मेडिकल वाले अगर हमसे लड़ने आते तो हम स्प्रिटो कॉलोजी को करेंगे, और आर्ट्स और कॉमर्स के अगर लड़ने आते हैं तो हम स्प्रिटो लॉजी को लॉन्च कर देंगे, हम इसको साइंस में कन्वर्ट कर देंगे। हमको नए जमाने के साथ चलना है तो बताना पड़ेगा, तो हम बता देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्पेक्ट्रम, लैब एक्सपेरिमेंट्स, और इसके अलावा हम वेवलेंथ, इन सब की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, डीबी गेन की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो ये सब हम बता देंगे कि क्या होता है स्पिरिचुअलिज्म उनकी भाषा में। 80% एनर्जी हम लोग वेस्ट करते हैं। अगर आप यहां रहोगे तो आपको पता लगेगा कि 5% जो एनर्जी है उसमें सारे काम होते हैं, 95% एनर्जी जो है हम वेस्ट करते हैं। पोजीशन पर पहुंचने के बाद क्या है, खाना हम खाते ही हैं हेल्दी हाइजीनिक, फिर भी हम बाहर मटेरियलिज्म में अपने आप को वेस्ट करते हैं। ये साइंस ने ही बता दिया है और हमारा साइंस भी बताएगा। ये आइरिस, जब आंख को हम देखते हैं, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जब आंख में हम देखते हैं तो अंदर पहले इसके सेल्स दिखते हैं, सेल्स के दिखने के बाद पूरे यूनिवर्स दिखता है, यूनिवर्स के बाद सारे पृथ्वी और ये सब दिखती है, और उसके बाद जाके एक लाइट दिखती है, लाइट को देखने के बाद वापस से फिर हम वही चक्र में आते हैं, और चक्र में आते आते वापस से हमको यही दिखता है। ये साइंस ने बता दिया है, मतलब हमारी आंख, जो आंख जिसे कहते हैं, तो ब्रह्म कुमारी में जो आंखों की दृष्टि के बारे में बात करते हैं वो साइंस है। डिटेचमेंट की बात जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। निगेटिविटी हर जगह है, और ये जो निगेटिविटी के स्पेक्ट्रम है उसको हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में। तो जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो रहता है, वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ये साइंस के द्वारा स्पिरिज्म में होता है, और वो फीडबैक हमको लेना है। तो पूरी बॉडी हमारी टेक्नोलॉजी है, वो एक मेडिकल साइंस है, वो कोई सा भी साइंस ले लो, लेकिन जो अब हमको इस स्पिरिचुअलिज्म को एक साइंस के बाद का शब्द देना है, हमको इसको स्पिरिचुअलिज्म नहीं कहना है। अभी हमारे रिसर्चर्स ने बहुत सारे पेपर प्रेजेंट करे थे, मशीन लर्निंग, IoT लैंग्वेज, ये जो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब के को हमें लेते हुए इसको लेना है। हमारे इंडियंस बहुत स्ट्रगल करते हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे, US की भाषा पढ़ेंगे, इधर संस्कृत भी पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, उसके बाद भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस है। तो आप बताएं कि बाहर के लोग तो सिर्फ अपनी लैंग्वेज पढ़ते हैं, चीनी जापानी, और उसके बाद उनका बिल्कुल सिंपल जीवन रहता है। तो अगर हम भी हमारी कोई एक लैंग्वेज पढ़ेंगे और सिर्फ उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। और जो यहां आए हैं, अब मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि अब घर से निकल गए हैं तो मंजिल मिली जाएगी, अब घर से निकल गए हैं तो मंजिल मिली जाएगी, पीछे तो वो रह गए जो निकले ही नहीं। तालियां। भाई साहब कह रहे हैं आप निकलेंगे क्या आप भी? अब जो लोग स्पिरिचुअलिज्म में आना चाहते हैं, अब थोड़ा सा और लास्ट की बात बता दूं कि आजकल चल रहा है कि भाई प्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टअप क्या होगा, बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं। वो कल का जो मेरा गीत था वो इसी के ऊपर था कि अब स्पिरिचुअलिज्म में पापा क्या कहते हैं, बड़ा नाम करेगा। आजकल बाहर ये चल रहा है कि क्या स्पिरिचुअलिज्म, क्या कुछ पढ़ लिख, जल्दी से बन, पैसा कमा, अपना खुद का फ्लैट ले, बंगला ले, ये सब चीजें जो भी कुछ है। तो अब स्पिरिचुअलिज्म में हमें उसको प्लेसमेंट देना है, मल्टीनेशनल कंपनी में लगाना है, तो मल्टीनेशनल कंपनी हमको खड़ी करनी है, और इसमें आप लोगों का मेरे को साथ चाहिए। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रिग्रेशन, लाप्लास ट्रांसफर, फोरियर ट्रांसफर, ज्योमेट्री, एंगल, और न जाने कितनी चीजें हैं, वो सब हम इसको प्रूफ कर देंगे। और सबसे पहली बात होती है वुमेन्स एम्पावरमेंट में, हमको उनको स्पिरिचुअलिज्म में सिखाना है कि बच्चे से वो ज्यादा लगाव ना रखे, 5 साल में जो छोड़ देते हैं पहला का जो गुरुकुल सिस्टम था वो लगे, क्योंकि आज के बच्चे उसी में ही बर्बाद हो रहे हैं अटैचमेंट के कारण। तो उसको 5 साल के बाद गुरुकुल सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, बाकी तो फिर बहुत कुछ है। ओम शांति।
अभी देखो शिव बाबा हमको अंग्रेजी हिंदी सबसे निकालकर मौन की भाषा सिखा रहे हैं, तो हमको सभी को थोड़ा मौन की भाषा भी सीखनी है। और कहते हैं जैसे सभी के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी है कि शिव बाबा ना घर देता है ना मकान देता है, लेकिन हम सबको दिल का आराम देता है। तो आप सब एक बार शिव बाबा के लिए जरूर थैंक्स करेंगे। हमारे बीच में सिरीन दीदी बैठी हुई हैं, टिम्पा USA से हैं आप, और इनका मैं शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगा। सिरीन चंदा हैज अ रिमार्केबल 20,000 आवर्स ऑफ मेडिटेशन एक्सपीरियंस विद द ब्रह्मा कुमारी। तो शी इज अ
हाँ 20,000 ही है 20,000 दीदी 20,000 सो दीदी 5 मिनट में अपना एक एक्सपीरियंस आपके बीच में रखना चाहेंगी और आप सब दीदी का वेलकम करेंगे.
ओम शांति. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू एवरीवन फॉर एस्टीम्ड गेस्ट फॉर शेयरिंग योर थॉट्स. आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ टू थिंग्स दैट वी डू इन द ब्रह्मकुमारीज. वन इज वी कॉल अमृतवेला. Amrit Vela is the morning meditation where it's the Brahma Muhurt, where we wake up at 3:30 in the morning. So when I first heard about Amrit Vela, I just was writing my thesis. I worked in the University of South Florida as a scientist for 15 years. And so this was just my beginning when I was just started my Brahma Kumari's journey and also my scientific journey. And when they told me, when the sister in the center told me that you have to wake up at 4 in the morning, I thought they were joking because I was used to sleeping at 2 a.m. because I was writing my thesis. But anyway, after a lot of trouble, I started waking up at 4 in the morning. And the amazing experiences I had, especially blessings from Shiv Baba and the peace I experienced, and I also had amazing experiences of the soul world, all of those things happened. But that's not what I want to share. So one of my bosses, so I started working right away, and one of my bosses was giving me a very hard time. Something, I felt it was personal, you know, but whatever it was giving me a very, very hard time. And he was there for a long time, and he was the boss, and whatever he had to say, everyone had to do. So what I did was, at Amrit Vela, right after I finished my yoga with Baba, I started invoking Baba and I started invoking the soul and I started giving him lots of love. And so about 2 weeks after I started doing that, I realized that that soul was really changing. And would you believe it, about 3 weeks after I started this practice at Amrit Vela of giving this soul Sakash, Baba was giving him Sakash, he resigned and left. So it really works, right? It really works. So Amrit Vela especially works, right? This was important because, you know, when I first came, right, because it was so hard for me to do Amrit Vela, I had to have 3 alarm clocks. So one was in the kitchen, one was in my closet, one was in the bathroom. And if I switched off the kitchen one, this was long time ago in the 90s. So we didn't have smartphones and things like that at that point. So one was in the kitchen, one was in the closet. So I would switch off all of these alarms. And when I went to the bathroom, if I knew that I was switching off the alarm clock in the bathroom, then it was really, I had to do something about it because then I would take a shower and sit with Baba. So it really paid off. So I don't know about the research. So my research was on transportation, so it was not on spirituality. But whatever it is, I have the authority of experience that Amrit Vela really works. You do receive blessings. The amazing amount of experiences I had at Amrit Vela, I could have never had at any other time. So it was worth having 3 alarm clocks to get up at Amrit Vela. And I want to share another experience. And this is, we offer something called Bhog. So in all the centers, I live in the center in the U.S., in all the centers, we offer whatever we make, we especially make fresh food every day and offer in Bhog to Baba. Right? So it is not only our mark of respect, but also the food is being purified. So one time, a few years ago, I went to the doctor. I had biopsies and stuff, and I went to the doctor, and the doctor told me I had cancer. I had breast cancer. And, you know, research shows that once you tell someone that they have cancer, for 3 weeks, they don't hear anything else. because they are in such a daze that they don't hear anything else for 3 weeks. So I came back from the doctor's office when they told me I had cancer, and somehow the thought kept coming. So in our Murlis, what Baba says is, even if your mother dies, eat halwa. So the thought kept coming, make halwa and offer bhog. And so I went into the kitchen. So this, I'm still in a daze, right? This that I just heard I had cancer and I'm still in a daze. I went into the kitchen. I made halwa because I thought, you know, what better time to make halwa than when you hear you have cancer. And so I made halwa and I offered it to Baba. And the experience I had in bhog was so beautiful, so calming, that I really felt I was sitting in Baba's lap and Baba was taking care of me. So I offered the bhog halwa and I came out and I ate the bhog, and you will not believe how different I felt from when I heard to after eating the bhog. It was so calm. I felt so calm. I knew everything will be all right, that not to worry, Baba is with me and I don't need to worry. And I really feel it was this act of offering bhog, offering the food, filling Baba's vibration with that food and eating that food that really made the difference in the body, and not only the body but also the mind. So anyway, the cancer treatment all went well and I'm here. Happy to be with all of you. Thank you so much. Om Shanti.
थैंक यू सो मच दीदी. और दीदी के एक्सेंट से एक बात और याद आ गई मुझे सेंटर की. जैसे हम सभी ने, बहुत सारे जो बच्चे होंगे, आप सभी कॉन्वेंट में कुछ लोग पढ़े होंगे, और हम लोगों ने सिक्स से इंग्लिश पढ़ी, तो वैसे ही टोन और एक्सेंट में फर्क आ जाता है. तो किसी ने फोन किया हमारे सेंटर पर, तो उन्होंने बोला कि इज इट राजू सेंटर. तो मेरे को सुनाई दे रहा है कि राजू का सेंटर. तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, राजू का सेंटर नहीं भाई, ये राजयोगा सेंटर है. क्या वही मैं वही पूछना चाहता हूँ. मतलब जो अमेरिकन एक्सेंट है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है. तो आज दीदी को सुन के लगा कि मैं आज एक्सेंट का कितना फर्क है, राजू का सेंटर में ना राजयोगा सेंटर. तो बहुत बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हमारे बीच में रखा. और एक बहुत अच्छी बात, पिछली बार भी आपने फर्स्ट एपिसोड में सुना था, बहुत अच्छी एक्टिंग लेके आए थे अमरनाथ सेंटर की कुमारियों ने. तो आज भी एक मोनो एक्टिंग है जो मोबाइल डी एडिक्शन पर है. कुमारी जया हमारे बीच में आ रहे हैं अंबरनाथ सेंटर से. एक बार जोरदार ताली से वेलकम करेंगे मोनो एक्टिंग और अप्रिशिएट करेंगे.
गुड मॉर्निंग. 19/20 अपर्णा, 20/20 विशाल, 18/20 ओके, आप सबको मार्क्स मिल गए, लेकिन मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ. मुझे ऐसा लगा था कि इस बार भी दिशा ही फर्स्ट आएगी, लेकिन इस बार अपर्णा के मार्क्स दिशा से काफी अच्छे आए हैं, यानी कि अपर्णा क्लास की टॉपर है. वेल डन अपर्णा.
अरे वाह बेटा, मुझे तुम पे गर्व है. तुमने एक पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाए, इस चीज के बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ.
थैंक यू पापा. वैसे तो आप देना क्या चाहते हो?
मोबाइल.
ओ माय गॉड, मेरा सपना. आप कितना ख्याल रखते हो पापा. मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे भी ना ऐसे अच्छे मार्क्स लाया करूंगी. हेलो, हाय, कैसी है यार? पता है नई नई ट्रेंड्स निकली हुई है, चलना है मॉल पे? चलना प्लीज प्लीज प्लीज. अरे सुनना, मोबाइल में एक नया ऐप आया, तुमने डाउनलोड किया है क्या? मुझे तो बड़ा मजा आया. क्या गेम था यार, पूरा समय तो मेरा उसने ले ही लिया और मैं बिजी हो गई इस गेम में ही.
I'm
अरे बेटा जरा वो चीज देना।
बस पापा दो मिनट ना। रुको ना, कितना काम देते रहते हो आप।
बोलिए व्हाट्सएप भगवान की जय। ओम गुरुर व्हाट्सएप गुरुर फेसबुक गुरुर देव गूगल यूट्यूब साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री मोबाइल नमः। ओम जय व्हाट्सएप देवा स्वामी जय व्हाट्सएप देवा तुम्हारे कारण भूले तुम्हारे कारण भूले मात पिता की सेवा ओम जय व्हाट्सएप देवा।
अरे देखो तो इसे, जब से इसके हाथ में मोबाइल आ चुका है तब से बात करना तो दूर, हमारी तरफ तो देखती भी नहीं।
हाँ हाँ और नहीं तो क्या, मैडम के हाथ में मोबाइल जो आ गया है ज्यादा ही उड़ने लगी है और नहीं तो क्या।
मैंने तुझे व्हाट्सएप किया तुझको मैंने याद किया गाना गा के इज्जत दिया तूने फिर फॉरवर्ड किया सेकंड हैंड मैसेज भेजना अब तो बस कर बढ़िया सा कोई बक बक खुद से टाइप कर जब भी मैंने दस दस बार तुझको व्हाट्सएप किया तूने वेट वेट बोल के हर बार खिसक लिया तेरे हाथों से मोबाइल गिर के बने कूड़ा और तेरे उंगलियों को काट जाए कीड़ा। बोलो कैसे व्हाट्सएप करोगे तुम दिन भर तेरे सारे हैंडसेट में पटक धुआं कर। मैंने तुझे व्हाट्सएप किया ब्लू वाला टिक भी हुआ रिप्लाई देने से तू चुका ये तो बस बहुत हुआ। मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया कोई फायदा ना हुआ तुझको कितने व्हाट्सएप किया तूने मुझे छाता बचिया।
काय सदब कितनी बार व्हाट्सएप करूं एक जवाब नहीं दे सकते हो क्या तुम हैं? दिन भर व्हाट्सएप पे लगे रहते हो जब भी देखो तुम ऑनलाइन रहते हो फिर भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं करते हो कोई मतलब है क्या? I will complain to WhatsApp company. You are not using WhatsApp properly. You reply everybody and you are not replying to me. And stop sending me forwards, okay?
इस मोबाइल की वजह से मैंने क्या क्या खो दिया, फ्रेंड्स भी मार्क्स भी सम्मान भी, अब और क्या क्या होने वाला है।
ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं बन गया दोस्तों, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथों की घड़ी खा गया, ये टॉर्च खा गया, चिट्ठी पत्रियां भी खा गया और तो और किताबें भी खा गया, रेडियो खा गया, टेप रिकॉर्डर खा गया, कैमरा खा गया, कैलकुलेटर खा गया, पड़ोस की दोस्ती तक खा गया, मेल मिलाप खा गया, हमारा वक्त भी खा गया, पैसा खा गया, रिश्ते खा गया। कंबख्त इतना सब कुछ खाकर तो स्मार्ट बना है, बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा है, आदमी पागल और फोन स्मार्ट होने लगा है। जब तक फोन वायर से बंधा था इंसान आजाद था, जब से फोन आजाद हो गया है इंसान फोन से बंध गया है। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते आजकल, जुबान पे निभाने का ये वक्त ही कहां रहा। सब टच में बिजी हैं पर टच में कोई भी नहीं है।
आज मोबाइल के हम इतने आदीन हो गए हैं कि एक बार खाना नहीं होगा तो चल सकता है लेकिन मोबाइल साथ में ना हो तो नहीं चलता। और कभी कभी तो रेंज नहीं होने पर तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। भाई साहब टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, बदतर नहीं। टेक्नोलॉजी जीवन को खुशहाल बनाने के लिए है, बेहाल बनाने के लिए नहीं है। सुना था जीवन का फंडा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और आज हाई फाई मोबाइल लिविंग एंड नो थिंकिंग हो गया है। मैं जानता हूं मोबाइल आवश्यक है लेकिन जितना जरूरी हो उतना ही उसका उपयोग करें। सुना है आगे चल के ऐसा भी आएगा कि कोई साधन मोबाइल आदि काम नहीं आएंगे, तब सिर्फ टेलीपैथी ही काम आएगी, यानी आपकी अपनी साधना ही। तो अब मोबाइल का यूज तब करें जब आवश्यक हो, बाकी टाइम में आप साधना करें, योग करें, जो आपके साथ हमेशा रहेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनमें साइंटिस्ट, विचारक और साहित्यकार भी हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करते हुए भी इंसानियत के साथ सामान्य सिंपल जीवन जिए हैं, और शायद वो आपको इस गीत के साथ कुछ याद आ जाए।
सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत टैलेंटेड लोगों को पैदा किया अंबरनाथ सेंटर ने। बहुत बहुत इनका अभिवादन है, स्वागत भी है, सम्मान भी है कुमारी जया का। और अभी जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ आपके बीच में, इन्होंने दिन रात एक करके, आप इनको मैंने खाना खाते हुए भी नहीं देखा, अभी नाश्ता करते हैं, सुबह से शाम तक चलते रहते हैं और आप सबके लिए प्लान बनाते रहते हैं। हमारे आज के एक्शन प्लान को आपके सामने लेकर आने वाले हैं हमारे श्रीकांत भाई जी। इनका मैं ब्रीफ में परिचय देना चाहूंगा। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर तो है ही हैं, लेकिन आज इनका बायोडाटा पढ़ते मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि 1974 में पैदा हुए, इस मेरे एज में भी बड़े हैं। तो मैंने देखा ये मेरे से ज्ञान में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, मेरा नाम भी अनुज है, तो तीनों तरह से बड़े हो गए। इनके लिए जोरदार ताली। एजुकेशन में आप बीकॉम विथ अकाउंटेंसी ऑनर्स आपने किया उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से, और 95 में आपने ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया, और ज्ञान सरोवर में आप 97 से रह रहे हैं, और बहुत सारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं आप उसके लिए इनिशिएटिव लेते हैं। और इनके अंडर लगभग इन्होंने ऑर्गेनाइज किया 20 कॉन्फ्रेंसेज, 2 सेमिनार्स और 30 स्पिरिचुअल रिट्रीट इन माउंट आबू। तो जोरदार ताली भाई साहब के लिए बजनी चाहिए। बहुत सुंदर, शंखनाद से आपका स्वागत हो रहा है।
ओम शांति। सम्मानित मंच और आज की इस कॉन्फ्रेंस के लास्ट सेशन समापन सत्र में उपस्थित सभी देश के कोने कोने से आए हुए हमारे मेहमान, एक्शन प्लान बताने से पहले मैं एक बात आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। आप सभी जिस कैंपस में आए हैं और हम जिस हॉल में बैठे हैं, इसकी अपनी एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। ब्रह्मा कुमारी की जो हम आप सुनते हैं कि 1936 से शुरुआत हुआ, और हम यहाँ पर एक बात कहते हैं कि परमात्मा का अवतरण होता है और वो हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं, जो आज आप 4 दिन से सुन रहे हैं। लेकिन जो बात मैं कोट करने वाला हूँ आप सभी के लिए है, 5 मार्च 1984 परमात्मा शिव एक विशेष वैज्ञानिक से मिल रहे थे। आप नाम सुना होगा, नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट इंग्लैंड के हैं जोसेफसन। तो उनसे मिलते हुए बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कहा था कि आप विज्ञान के क्षेत्र में जो भी रिसर्च करते हैं, आपका लक्ष्य है विश्व कल्याण करना, और उसमें उन्होंने दो बात कहा था उनकी एक्शन प्लान के लिए। और मैं जस्ट यहां बैठे बैठे उस मुरली को पढ़ रहा था, जब हमारे एक्शन प्लान में दो बात जुड़ जाए, एक पावर ऑफ साइलेंस और दूसरी बात हम अपने थॉट को अगर प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं और यूजिंग द पावर ऑफ मेडिटेशन, तो हम कोई भी एक्शन प्लान करते हैं और वो 100% सफल होता है। और वो वैज्ञानिक थे, उनके सामने परमात्मा एक शब्द कहते हैं कि जब आपकी ब्रेन, आपकी बुद्धि सत्व प्रधान होगी तो आप जो इन्वेंशन कर रहे हैं और उसको प्रॉपर एक्शन में जोड़ेंगे तो विश्व कल्याण होगा। तो चार दिन से हम सभी, आप जैसे अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, आप सबसे सुना और आपकी जो रेस्ट टाइम था उसमें हमने लिया, और कुछ सिलेक्टेड गेस्ट रिसर्चर से हम दो दिन मिले, और मिलने के बाद कुछ 7 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है जो आपके सामने हम बताना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले कई बार हमारे गेस्ट हमें पूछते हैं कि आप 2021 में जो एक्शन प्लान किया था, 2022 में आपने उस पर क्या सफलता प्राप्त की, और 2022 में आपने एक्शन प्लान किया तो 2023 में उसकी क्या रिजल्ट मिला। तो सबसे पहले हम डायमंड हॉल में लास्ट ईयर प्रेजेंट किया था एक्शन प्लान कि हम 2022 में क्या करने वाले हैं, जो आपके सामने है। और जो 2022 की एक्शन प्लान के अंतर्गत हमने ये प्लान किया था, 2022 में निमहांस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इनके साथ मिलकर के विशेष एक प्लान किया था और उसको हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। वो है यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड प्रोग्राम विद द कोलैबोरेशन ऑफ निमहांस, और लगभग 70 रिसर्च स्कॉलर्स पार्टिसिपेट किया था, और अभी एक रिसर्च स्कॉलर को अपॉइंट किया गया है जो ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन के ऊपर, खास राजयोग मेडिटेशन प्रोफिशियंस को लेकर के जो प्लानिंग के तहत रिसर्च चल रहा है कॉन्शियसनेस स्टडी सेंटर निमहांस में। और सेकेंड हमने प्लान किया था कि जैसे आप अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, और हमने IIS के साथ मिलकर के प्लान किया था कि जो जब भी हम कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं, एक साथ 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग मिलकर प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी ब्रेन में खास करके गामा बैंड में, गामा वेव पैटर्न में क्या चेंज होता है। और इस पर खास करके सेंटर फॉर न्यूरो साइंस IIS की जो साइंटिस्ट सुप्रतिम रे काम कर रहे हैं, और हमें बहुत सुंदर रिजल्ट मिला है कि जब भी पर्टिकुलर थॉट को लेकर हम उसको विश्व के लिए प्रसारित करते हैं तो उसी वक्त हमारी ब्रेन गामा वेव प्रोड्यूस करती है। और ये शायद जो उनका कहना था कि दुनिया में पहली बार स्टडी कर रहे हैं मेडिटेशन के ऊपर। और एम्स पटना के साथ मिलकर हमने काम किया था, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, जो पैनिक पेशेंट हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट लिया था 2020 में और कोविड आ गया, फिर भी 90 पेशेंट्स को जो गांव में रहने वाले थे उनको कमेंट्री के द्वारा, जो हमारी बहन अपॉइंट थी इसको प्रैक्टिस कराने के लिए, तो उसमें ये रिजल्ट पाया गया कि दूर ज्ञान को बहुत कम समझे, लेकिन जैसे सिस्टर श्रीन बता रही थी कि अमृत वेले अगर आप प्रैक्टिस करते उसके इम्पैक्ट होता ही है। एक मजदूर दूर गांव का सवेरे 15 मिनट प्रैक्टिस किया और 2 महीने के लिए, तो उनकी जो पैनिक पेशेंट की नाते मेडिसिन चल रही थी तो 15 मिनट की प्रैक्टिस में उनकी मेडिसिन छूट गई। और सिर्फ साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात नहीं है, लेकिन जो ईज स्टडी की गई उसमें बहुत सुंदर रिजल्ट मिला है जो अभी 2 महीने उसको पब्लिश किया जाएगा। ये था लास्ट ईयर। अभी इस वर्ष हम 7 पॉइंट प्लान लिया है, फर्स्ट हम स्पार्क की तरफ से विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चर्स इंटरेस्टेड इन डू रिसर्च मेडिटेशन फील्ड. सेकेंड, वी आर गोइंग टू क्रिएट डाटाबेस, जो हम अलग अलग ईज पैटर्न को रिकॉर्ड कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर को लेकर के अलग स्टैटिस्टिक्स डाटा बना रहे हैं. और आपसे अगर कोई इंटरेस्टेड है आप में से, आप उस डाटा को यूज कर सकते हैं फर्दर डिफरेंट टाइप रिसर्च को आगे ले जाने के लिए. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल इंटरेस्ट रिसर्च ग्रुप. जो रमेश भाई जी थे इस संस्था ये स्पार्क की फाउंडर, तो उन्होंने करीब 10 फील्ड रिकॉग्नाइज किया था अलग अलग साइंटिफिक बैकग्राउंड को लेकर के, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज और साइकोलॉजी, मेडिसिन. तो ये सारे फील्ड में स्पार्क की तरफ से कई रिसर्च एक्टिविटीज होते हैं. आप में से जो एक्सपर्ट्स हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. विल ट्राई टू डिजाइन न्यू रिसर्च एरिया. और इस वर्ष जो हम अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, एमओयू कर रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे. टू क्रिएट इकोसिस्टम ऑफ कोलैबोरेटिव अप्रोच टुवर्ड्स मीटिंग द चैलेंजेस डिस्कस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस सेशन. जैसे कल पैनल डिस्कशंस में आप सुन रहे थे डॉक्टर विजेश चंद्रा जी, प्रदीप भाई, डॉक्टर प्रताप जी को, तो हम ये आपसे आपको इनवाइट करते हैं कि जो आप में से एक्सपर्ट्स हैं आप प्रदीप भाई से जरूर मिले, तो एक सुंदर ग्रुप बनेगा. आज प्रेजेंट डे में यूथ जो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, हम उसको उन लोगों के स्पिरिचुअल सोल्यूशन दे सकते हैं, उस पर काम करेंगे. डिजाइन फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एंड स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको लेकर के स्पार्क की तरफ से एक सुंदर ग्रुप बनाया जाएगा, जो आप सभी हमें मदद करेंगे, तो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में भी एक ब्यूटीफुल रिजल्ट के साथ आपके सामने आएंगे. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप जो लक्ष्य लेकर आप यहाँ आए थे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको जरूर प्राप्त किया होगा. जो अनुभव आप यहाँ लेके गए, लेके जा रहे हैं, अपने परिवार में, अपने संबंधी में, जो आपके रिलेशंस, उन जरूर बांटें, क्योंकि अनुभव से हमको जो लाभ मिला है हम उनको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
थैंक यू सो मच श्रीकांत भाई, आपने बहुत कम समय में सारे एक्शन प्लान को सबके सामने रखा. और कल शाम को जब इधर अनाउंस हुआ कि आप शाम पीछे जाकर स्नैक्स और टी लेकर आए, तो हमारे एक साथ आए थे डॉक्टर धर, वो किसी को वॉच कर रहे थे, उनको हम बुलाना चाहेंगे अभी. और वो देख रहे थे कि इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद ये भी लाइन में लगकर चाय ले रहे हैं. तो इतने डाउन टू अर्थ हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी. तो एक बार डाउन टू अर्थ, आप इतने ज्यादा पूरा नियम को आपने फॉलो आप कर रहे थे और सब आपको वॉच कर रहे थे. खासकर ऐसे गेस्ट जब वॉच करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो आपके लिए एक बात जरूर बोलना चाहेंगे कि बहुत ढूंढा इस दुनिया में आप जैसा कोई मिला ही नहीं. बहुत ढूंढा इस दुनिया में आप जैसा कोई मिला ही नहीं. मिलता भी कैसे, ऐसा कोई था ही नहीं. तो हमारे बीच में डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी.
सम्मानित मंच, सभागार में बैठे सभी ईश्वरीय आत्माओं को मेरा नमस्कार. मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ, डॉक्टर रंजना पूर्वे के साथ, परम पिता शिव परमात्मा एवं बर्मा बाबा के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के सानिध्य में मुझे 15, 16, 17, आज 18 तक यहाँ प्रवास करने का मौका मिला. और यहाँ प्रवास के क्रम में 3:30 बजे प्रातः उठना, स्नान आदि करने के बाद बर्मा बाबा के कक्ष में जाकर के दृष्टि मिलन, मेडिटेशन, मुरली क्लास में सम्मिलित होने के बाद भाइयों के साथ अल्पाहार प्राप्त करके पुनः कॉन्फ्रेंस के लिए जो निर्धारित विषय है उसमें प्रतिभाग करने का मुझे मौका मिला, यह समझिए ईश्वरीय कृपा है। जब कभी भी मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि बराबर आप माउंट आबू क्यों जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं बराबर मैं राजनीति में भी कहा करता था कि मैं शिक्षक टर्न पॉलिटिशियन हूँ, मेरे भीतर जो शिक्षक नाम का प्राणी है वह कभी मरने नहीं पावे। हमारी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कोर्स है, रिफ्रेशर कोर्स है, तो उस ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स में टीचर के रूप में मैं सम्मिलित हुआ, गणित को पढ़ाने के लिए, फिजिक्स को पढ़ाने के लिए। लेकिन जो पेट परोस परमात्मा, पेट परोस परमात्मा अंतिम लक्ष्य जो जीवन का है, इसको प्राप्त करने के लिए जो इसे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जाता है उसमें मैं सम्मिलित होता हूँ, मेरे भीतर जो स्पिरिचुअल बैटरी है वह डिस्चार्ज हो गया है उसको चार्ज कराने के लिए। साथियों, यहाँ आने के बाद जब आप साथियों से हम मिलते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कटक तक, सभी भाइयों में जो स्पिरिचुअल माइंड में मैं देखता हूँ, जो ये स्पिरिचुअल माइंड, तो मेरे मन में आता है कि यही स्पिरिचुअल माइंड जो है सभी साथियों में, सभी साथियों में जो प्रेम के साथ दूसरों को सेवा करने की जो भावना है, वही भारत के ज्योग्राफिकल यूनिटी और फेडरल यूनिटी को मजबूत करता कर सकता है। मेरा यह स्पष्ट मानना है एक गणित के प्राध्यापक के रूप में और एक राजनीति कार्यकर्ता के रूप में कि भारत की एकता और अखंडता को नॉट सिंपली द ज्योग्राफिकल यूनिटी रैदर द इमोशनल यूनिटी, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल माइंड जो यहाँ पर है लोगों में, वो गॉड गिफ्ट स्पिरिचुअल माइंड है, उसको हम इनरीच कैसे करें, उसको हम प्रायोगिक स्तर पर आगे कैसे ले जाएं, तभी भारत की एकता और अखंडता अक्षुण रहेगी। हम यहाँ के जो विषय निर्धारित अमिका जी हैं, भाई हमारे श्रीकांत भाई हैं, हमको कभी कभी आश्चर्य लगता है गणित के हम टीचर रहे हैं, आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर मेरा रिसर्च है, लेकिन इस तरह के अद्भुत अनोखा विषय का आप चयन कैसे करते हैं। अभी आप जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड स्पेशलिटी द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इससे जो एलाइड सब्जेक्ट है, एलाइड विषय जिसकी चर्चा हमारे विद्वान साथियों ने किया है, तो हमें लगता है कि इट इज नॉट द फिजिकल माइंड, इट इज नॉट जो साइंटिफिक माइंड, रैदर इट इज द स्पिरिचुअल माइंड जो आपको विवश करता है कि हम ऐसे विषय को यहां पर विमर्श करावें जो हमें फिजिकल इन्हांसमेंट के साथ स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट करावें। इसके लिए हम आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अंत में हम सब हमारे विद्वान साथियों ने कहा है एक शब्द है अनुभव, दूसरा शब्द है अनुभूति और तीसरा शब्द है अनुप्रेरणा। यानी यहाँ के कभी कभी हम सोचते हैं कि हंसता हुआ चेहरा कभी मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, हम लोग के चेहरा पर 12 बजे रहता है और यहाँ पर तो देखते हैं कि जो ड्राइवर मेरा है जगदीश वो भी हंस रहा है, रामचंद्र पूर्वे जिसको आप लोकतंत्र में राजा भी कह सकते हैं, तो उसके चेहरा पर 12 बजा हुआ है। क्यों? एक रिसर्च है मेरे दिमाग में आता है, इसलिए कि हमारे कर्म अकर्म और विकर्म, हम विकर्म में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने प्रेमपूर्ण आवाज आवाज आवरण से सेवा करने की जो व्याकुलता आकुलता उनमें है, उनके चेहरे पर एक विशेष तरह का आभा क्रिएट करता है जो आभा हमें नहीं है। यह ईश्वरीय गिफ्ट है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि सेल्फ साल्वेशन इज नो साल्वेशन। जब स्वामी विवेकानंद जब अपनी आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करके अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे कि गुरु जी हमने तो सिद्धि प्राप्त कर लिया है साधना के द्वारा, डांटते हुए रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सेल्फ साल्वेशन इज नो साल्वेशन, तुमको मुक्ति मिल गई है और दुनिया के लोग अभी भी अज्ञान के अंधेरा में फंसा हुआ है और तुम समझते हो कि हम मुक्त हो गए। तो उसी समय स्वामी विवेकानंद अबाउट टर्न हुए और घूमने लगे। तो हम साथी यहां पर जितने भी आए हुए हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम अपने नेबरहुड में आगे चल कर करके हमको जो ज्ञान की प्राप्ति प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परम पिता शिव परमात्मा और वर्मा बाबा से जो हमें आशीर्वाद मिला है और आप भाईचारों से जो भाईचारा का संदेश प्राप्त हुआ है इसको हम ट्रांसमिट करें, कम्युनिकेट करें अदर्स के साथ। इसी निवेदन के साथ इस धरती को पुनः प्रणाम करते हुए मेरा आप पूछे कब जा रहे हैं। श्रीकांत जी हमको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, हम जा नहीं रहे हैं, फिर आगमन के व्यवस्था करने के लिए हम गांव में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, आप गणित के स्टूडेंट रहे हैं तो एक बात कही जाती है गणित में हर एक चीज मान ली जाती है। तो जब रिसर्च हम कोई चीज कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है जब गणित में हर एक चीज मान लिया तो शिव बाबा को भी मान लो भाई। अब इसमें कहा जाता है कि डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी बात कहा कि एक के बाद इसी ने मेरे से पूछा कि आपने कैसे मानने वाली बात की गणित की, वो भी थे। मैंने कहा एक के बाद दो आता है, कहते हैं हाँ। मैंने कहा ये फैक्ट है या बिलीफ है, तो कहता है फैक्ट है। मैंने कहा ये तो बिलीफ है, एक के बाद तो 1.1 आता है, 1.2 आता है, पौने दो आता है, फिर दो आता है, एक के बाद दो तो नहीं आता। हाँ डॉक्टर साहब सही बात है, एक के बाद तो 1.1 ही आता है ना, एक के बाद दो आता है मान लिया हमने और उसी को मान के चल रहे हैं। तो शिव बाबा है ये डॉक्टर साहब ने मान लिया, अब ये जाकर जरूर ज्वाइन करेंगे सेंटर और रोज सेंटर जाया करेंगे अमृत वेले के लिए भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और अभी हमारे बीच में मैं अपनी आदरणीय दीदी को बुलाना चाहूंगा। हमारी आज की चेयरपर्सन और स्पार्क विंग के भी चेयरपर्सन राजयोगिनी अंबिका दीदी, आपका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा कि दीदी को इस ज्ञान में लगभग 45 साल से भी अधिक हो चुके हैं और आपके अंदर लगभग 300 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं जो साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में हैं। और दीदी का हो तो आपने 2-3 दिन से सुना ही है, तो एक बार दीदी का जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। आदरणीय अंबिका दीदी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे आदरणीय मंच और आप सब भाई बहनों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज मैं पहले हमारे वीसी साहब जो कह रहे थे उसको जरूर मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ कि यहाँ कोई भी सारी दुनिया में ईश्वरी विश्वविद्यालय में कई यूनिवर्सिटीज में गया इंडिया या बाहर, कोई भी फीस बिगर वहाँ व्यवस्था या भोजन या उसका जो ज्ञान है सुनना वो नामुमकिन है। लेकिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की ये जो विशेषता है इसके पीछे आप अनेकों को भी ये प्रश्न होगा, इसलिए मैं इसका उत्तर देना चाहती हूँ कि ये कैसे संभव है। ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भी सेवाएं है या ज्ञान दिया जाता है सिर्फ भारत में ही नहीं 142 कंट्रीज में, जो भी बाहर ज्ञान दिया जाता, राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता, या वैल्यूज के ऊपर यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, कहीं भी कुछ भी सिखाते हैं, मैनेजमेंट का प्रोग्राम बहुत सारी चलता है, हमारी 40 से ऊपर यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन विंग द्वारा सारा प्रोग्राम्स, एमआईयू द्वारा सारा चलता है, लेकिन कहीं भी यहाँ बाबा चार्ज नहीं करता है। ये बाबा से पूछा गया पहले कि कईयों ने कहा, सजेशंस आए, फ्री देने में उसका वैल्यू नहीं होता, कुछ तो चार्ज करना चाहिए। विदेशों में भी बातें आई, लेकिन शिव बाबा का जवाब था पहले से, बाप बच्चों से फीस नहीं ले सकता, ये बच्चों के अधिकार है, वर्षा है, मेरा बाप ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर की सारी ज्ञान, सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, जो कुछ भी है वो सब हम सब का वर्षा है, इसलिए बाबा कहीं भी, एक बाबा की विश्वविद्यालय है ये, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं है, ये पहली बात आपको पक्का करना पड़ेगा। जो भी ज्ञान अमृत वेले के बाद रोज सुनाया जाता, ऑल द 9000 ब्रांचेस इन 142 कंट्रीज, वो एक ही भगवान वाच, शिव भगवान वाच, बाबा की डायरेक्ट मुरली, जो ब्रह्मा द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, उसमें किसी भी मनुष्य का मिक्स नहीं है, वो डायरेक्ट भगवान वाच हर सेंटर पे चलता। जो कहते हैं यहाँ कोई चलाने वाला दिखता नहीं है, तो ये मुरली रोज हमें बाबा पढ़ाता है। चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें हर सब्जेक्ट के प्रति बाबा ज्ञान देता, सिखाता और शिक्षाएं देता, सावधानियां देता। जैसे आज बाबा ने कहा, बच्चे पहले धारणा करो, जो मैं कहता हूँ उस पर आप अपना जीवन बनाओ, गुणों को धारण करो, आपस में बहुत मीठा बनो, प्यार से रहो, आप कितना भी सेवा में है मेरी याद में ही करना है। तो जो भी हम सभी सेवादारी है, तो हम सभी जब सुनते हैं, हमारा लक्ष्य होता है, बाबा ने जो आज बोला उसका सारा दिन चिंतन, उसी अनुसार हमारा बोल, कर्म और हमारा व्यवहार हो। इसलिए यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता है, क्योंकि यहाँ सब घर के मालिक बैठे हैं, ये हमारा परिवार भी है, ये यूनिवर्सिटी भी है, और हमारा ये सेवा स्थान है, और हम सब वर्ल्ड सर्वेंट्स हैं। तो ये जो भावना, क्योंकि शिव बाबा खुद कहता, बच्चे मैं आप बच्चों की सेवा में आया हुआ हूँ, तो मैं सर्वेंट हूँ। जब बाप कहता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहता, मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ, तो हमारा बेस में बाबा ये डाल देता कि बच्चे यहाँ आपका कुछ भी नहीं है, हम आप सब सेवादारी हैं। तो इसलिए यहाँ सब ऑटोमेटिकली चलता है। बाकी कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आप सभी यहाँ आए, तो सुप्रीम साइंटिस्ट आप सब मानते हो, सारी सृष्टि उनकी रचना इतना ब्यूटीफुल, एंड उसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक सिर्फ शरीर, मानव शरीर को भी देखेंगे, उसको उसी रूप में कोई रिपेयर भी नहीं कर सकता है। तो इतना सुंदर उनकी रचना, एंड उसका कोई वैल्यू, द वैल्यू नहीं कर सकते, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना प्यारा होगा। और वो उसकी जो रचना, प्रकृति को देखिए, वो सदैव देता है, देता है, देता है, लेता नहीं। तो उसका रचयिता बाप, वो सदैव दाता, वरदाता, विधाता है, वो देता ही देता है। और हम बच्चों को कहता, बच्चे आप दो, देते जाओ देते जाओ, ठीक है आपका जेब का खर्चा नहीं करो, मेरे जेब से लेके सारा देते जाओ देते जाओ, सारी मानवता को दो। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, कल परसों का सभी भाई बहनों ने बैठे थे, मैंने सारा सुना और सुनने के बाद मेरा भाव यही है, कल भी मैंने कहा ये ऑलरेडी टू लेट है, ये इमरजेंसी है, और आप सभी जितना जल्दी अपने ये मानवता को, इस सृष्टि को बचाना है बचा लीजिए। और शिव भगवान वाच का एक कोट आप सबके आगे रखना चाहती हूँ, जो शिव बाबा ने 1970 में आप सबको आवाहन किया था और कहा था कि मेरे वैज्ञानिक बच्चे आएंगे, आकर के वो बच्चे इस परमात्म ज्ञान और परमात्मा की शक्तियां, जो जब हम जुड़ते हैं बुद्धि से, उनसे जो शक्तियां मिलती है वो शक्तियां कहाँ तक कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है और लास्ट में उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ना कि सिर्फ शरीर पर नहीं, प्रकृति पर, सारी एटम्स पर, सारी नेचर पर क्या होता, ये सिद्ध करके परमात्मा बाप का ये योग, राजयोग, सृष्टि के महत्वपूर्ण योग है, इससे कोई और योग नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान वाच है बच्चे योग कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। योग के नाम पर आजकल एक्सरसाइज, प्राणायाम या जो भी सिस्टम्स बने हुए हैं, हम सबने समझा वही योग है, लेकिन योग माना संबंध, संबंध माना कनेक्शन, संबंध सदा प्यार प्रेम से संबंध जोड़ा जाता है, संबंध ड्राई नहीं होता, सूखा नहीं हो सकता। तो परमात्मा बाप के साथ हमारा संबंध, कनेक्शन विथ रिलेशनशिप, ये योग है। ये जो संबंध है, इस योग आठ प्रकार का, ये राजयोग ही सहज योग है, ये राजयोग ही कर्म योग है, ये राजयोग ही ज्ञान योग है, ये राजयोग ही बुद्धि योग है, ये राजयोग ही परमात्म योग है, ये राजयोग ही भक्ति योग है और संन्यास योग है। तो ये सारा योग जो है तो परमात्मा ने सिखाया हुआ, और हर योग का टाइम लिमिट है, ये हर योग का जो प्राप्ति है, सिद्धि है, अलग अलग है। मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ, बहन ने जो आप के आगे शेयर किया, आप सब विज्ञानियों को, आप 5 मिनट उठिए 10 मिनट उठिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का मिस नहीं करिए। आप जो भी इन्वेंशंस या रिसर्च करते हो बाबा के आगे रखिए, बाबा से शक्तियां लीजिए। अगर वो मानवता के उद्धार के लिए है तो बाबा आपको इतना शक्तियां देंगे, नई प्रेरणाएं देंगे, जिसके आधार से आपका सफलता, सक्सेस इज गारंटीड। तो और जो बाबा की मुरलियां है, रोज नहीं आते लेकिन ऑनलाइन में ये मुरलियां मिलती है, ये टेक्निक सीखने के बाद योग के, आप जरूर उसमें सुनिए, बाबा कई प्रेरणाएं आपको देगा, क्योंकि उससे बड़ा वैज्ञानिक तो कोई है ही नहीं। और साइलेंस से ही साइंस आया है, तो वो अंतर्मुखता के आधार से जब आप अपने को देखते जाएंगे, बाबा को देखते जाएंगे, ढेर सारी ताकतें सिद्धियां मिल जाएंगी, जो आप इस दुनिया को जल्दी से जल्दी बेहतर बनाने का ताकत मिलेगा। इतना कहते हुए मैं आशा रखती हूँ आप सब शिव बाबा की प्रेरणा, उनकी जो आशाएं आपके प्रति है विश्व कल्याण की, वो जरूर पूरा करेंगे। ओम शांति।
दीदी की बात को, एक शिव बाबा को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि शिव बाबा एक है जो जीवन का सार देता है, वो हमसे पैसे नहीं लेता, वो हमको केवल उधार देता है। तो एक बार बाबा के लिए, शिव बाबा के लिए भी हम सबको जरूर थैंक्स करना चाहिए। और दीदी ने इतने अच्छे से बताया कि सारा योग, राजयोग जो है किंग ऑफ ऑल द योगाज है, तो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इसका लाभ भी होगा। और हमारे अभी एक बहुत सुंदर वीडियो क्लिप प्रेजेंटेशन हमारे बीच में है, जो एक स्पार्क जो बहुत सारी स्टडीज करता है भारत के जाने माने रिसर्च सेंटर जैसे IIT है, NIT है, इसमें एक बड़ी सुंदर रिसर्च आई है। एक होता है बीमार व्यक्ति पर करना, जैसे एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप ठीक ठाक हो तो अपना रूटीन चेकअप करा लिया करें, नहीं तो दूसरे ही आपको हॉस्पिटल लेकर आएंगे। तो उसी बात को बड़ा अच्छा इन्होंने बताया श्रीकांत भाई ने कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पर स्टडी हुई है जिसमें एक हेल्दी पर्सन के हार्ट रेट को चेक किया गया है। तो ये बहुत सुंदर रिसर्च है जिसको रघुवंश सिंह और विवेक रंजन जो स्पार्क ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, दुर्गापुर NIT ब्रह्मा कुमारी स्पार्क और आशुतोष मुखर्जी रोड पर एक हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है जो हमारी कानन दीदी उसको हेड करते हैं, तो तीनों के कोलाबोरेशन से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर NIT दुर्गापुर, और इसका टॉपिक था इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑन HRV बाय राजयोगा मेडिटेशन रिसर्च स्कॉलर। तो ये वीडियो क्लिप हम 8 मिनट का है, इसको देखेंगे और देखकर एक अपने अंदर एक नई ऊर्जा भरेंगे कि हम लोग भी अपने ऊपर रिसर्च करवा सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। गुड। और अभी जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस हमारी अलका दीदी कराएंगे हमें, तो उसमें आप सभी बड़े, क्योंकि आज हमारे इस सत्र के आधार से मेडिटेशन सेशन का ये लास्ट वो है आप लोगों के लिए स्पेशली, तो आप जब उसको करेंगे तो बहुत अच्छे से उसको एक्सपीरियंस करके अपने साथ ले जाएंगे। आ गया, शुरू कर सकते हैं वाला 1 मिनट? ठीक है, तब तक हम मेडिटेशन शुरू कर लेते हैं। आप हमारे बीच में, मैं आदरणीय अलका दीदी को बुलाना चाहूंगा, आप लोग बैठ जाएंगे प्लीज, अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे प्लीज। आदरणीय अलका दीदी बाल्यावस्था से ईश्वरीय ज्ञान से परिचित हैं, आप भी 45 वर्षों से भी अधिक समय से इस यज्ञ में हैं। कल्याण तथा उसे सभी संबंधित सेवा केंद्रों का आप सुचारू रूप से संचालन करते हैं। आप उनको इसके पहले भी सुने, आप गंभीरता और शांति की मूर्ति हैं, आप एक कुशल वक्ता हैं, आप सिंप्लिसिटी और रॉयलिटी के उदाहरण हैं। स्पार्क महाराष्ट्र जोन के आप कोऑर्डिनेटर हैं, आपने स्पार्क एग्जीबिशन द्वारा कई स्कूल और कॉलेजेस के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है, और दीदी के योग के विविध प्रयोगों के अनुभव आपके पास बहुत तरह से संचित हैं जिसमें आप खास रुचि रखते हैं। तो एक बार अलका दीदी से हम इस बार अच्छे से अनुभव करेंगे और योग करने के बाद कोई ताली नहीं बजाएंगे इनके लिए, सो आप इसको एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर जाएंगे। आदरणीय अलका दीदी।
ओम शांति। अभी तो आप सभी अनुभवी हो गए हैं राजयोग के अभ्यास के, रोज भिन्न भिन्न प्रकार से अपने मन को एकाग्र करना और परमात्मा के पास अपने मन और बुद्धि को ले जाना, इसका अभ्यास आप सभी कर ही रहे हैं। और अब इस कॉन्फ्रेंस से आप सभी वापस अपने स्थान पर जा रहे हैं जो आपका कर्म क्षेत्र है, जहां आपका परिवार है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि आप यहां से अपने परिवार के लिए क्या लेकर जा रहे हैं। कोई भी तीर्थ स्थान पर जाता है, कहीं दूसरे शहर में जाता है, तो पहले अपने परिवार के लिए सोचते हैं कि हम यहां से कुछ लेकर के जाएं। और यहां आप इस स्थान पर आए हो जहां पर इस आध्यात्मिकता का और विज्ञान का हम 3 दिन से चर्चा भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, तो आप क्या लेकर के चल रहे हैं? जाते ही आप अपने परिवार को क्या दोगे? कोई बताए क्या देंगे जी? मेडिटेशन सिखाएंगे।
तो जरूर ही आप इस बार अपने घर जाओगे तो हमारी शुभ भावना है कि आप एक एंजिल की तरह से जाओगे, अपने साथ अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए बहुत कुछ अपने मन के अंदर स्नेह शक्ति परमात्मा से भर करके ले जाएंगे और उनसे उनको संपन्न कराएंगे। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपका प्रवेश घर में जैसे होगा तो आपके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान होगी और अंदर से ये अनुभव होगा कि जिन चिंताओं को लेकर हम इस घर से निकले थे वो सारी चिंताएं क्या करेंगे, कुछ बची है 3 दिन के बाद, अगर कुछ रही हो तो भी देख करके जाना है, बिल्कुल हल्के बालक बनकर। परमात्मा के हम सब बालक, सो परमात्मा के संपूर्ण वर्षे के मालिक हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी भी आपको पता चल गई और उसको प्राप्त करने की विधि भी पता चली है। तो अब हम उस प्रॉपर्टी के मालिक बालक बन करके उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए बहुत सुंदर बातें आपको बुद्धि में रखनी है कि जैसे आप रोज अपने आप को कुछ एक बातें याद कर रही थे, जैसे अपने आप को याद दिलाओ कि मैं इस सृष्टि पर मेहमान हूं। जैसे ये स्मृति आप अपने आप को दिलाओगे आप बहुत कुछ बातों से डिटैच हो जाएंगे। आप अपने आप को ट्रस्टी बना लीजिए कि मैं ट्रस्टी हूं, मालिक वो है, आप बहुत हल्के हो जाओगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर परमात्मा के महावाक्यों में हमें युक्तियां मिलती है, आप नित्य उसका अनुभव करते हुए चलेंगे तो आपका जीवन बहुत सरल और बहुत लाइटनेस का अनुभव करेंगे। अब हम चलते कुछ समय के लिए उस गहन अनुभूति की ओर। स्वयं स्वयं से आत्मिक प्रेम से मन को एक सुंदर शांति की स्थिति में ले जाने का ऐसा सुंदर वातावरण चारों तरफ प्रकृति का नयनरम्य दृश्य फूलों की सुंदर महक बहती हुई नदी का एक सुंदर किनारा उस एकांत के जगह पर आप अपने आप को महसूस कीजिए। ओम शांति के मिले हुए अर्थ में अपने आप को अनुभव कीजिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं।
प्रेम स्वरूप हो। सुख स्वरूप हो। प्यारे शिव बाबा, मुझ आत्मा में असीम प्रेम भर रहे हैं। परमात्म प्यार, मेरा परिवर्तन सहज करा रहा है। जो परमात्मा को प्रिय है वही मेरा संकल्प, वही मेरा कर्म होगा। मीठे बाबा कहे बच्चे, सदा सुख देना, सदा सुख लेना, सुख का सागर तुम्हारा पीता है। सर्व प्राप्तियों के भंडार आपके लिए है। हे आत्मन, जब भी कोई आवश्यकता हो तो मुझे बहुत प्यार से याद कर लेना। मैं आपके बहुत करीब रहूंगा। साथी बनूंगा, हे प्रियात्मन, आप मुझे मेरा अपना दोस्त बना लेना। जब भी कोई बात दिल में भारी कर रही हो खुदा दोस्त को सुना दीजिए। प्यारे बाबा का साथ आत्मा में सर्व शक्तियां भरता है। अनुभव कीजिए परमात्म शक्तियों से भरपूर। अब मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, ये शक्तियां जीवन के सर्व विघ्नों को समाप्त कराएगी। विघ्न विनाशक बनाएंगे। प्यारे पिता ने मुझे निर्विघ्न भाव का वरदान दे रहे हैं। सफलता भाव विजयी भव वरदान को अनुभव करते हुए हम अपने आप को अपने परिवार अब तो विश्व ही मेरा परिवार है सर्व को परमात्म स्नेह और शक्ति की पालना देकर सर्व को निर्विघ्न बनाएंगे। प्यारे शिव बाबा का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। थैंक यू दीदी इतनी अच्छी रूहानी यात्रा कराने के लिए। तैयार है क्लिप्स? ठीक, तो अभी हम वो वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद चंद मिनटों का और प्रोग्राम बचा है, तो उस वीडियो क्लिप के में
पार्टिसिपेंट्स बी रघुवंश एंड विवेक रंजन विल बी शेयरिंग आवर रिसर्च प्रोजेक्ट विद ऑल ऑफ यू। They are part of a SWAT project in West Bengal and project is on how Raj Yoga meditation affects the autonomic nerve systems which influence the HRV. We are receiving guidance from Dr. Suman Haldar sir and Dr. Anindita Gongli ma'am. I will be begin the presentation now. In recent studies, we have shown that the feeling of stress and it can be connected to heart problems like heart attack and strokes. Stress can affect our body autonomic nervous system work and might even lead to sudden cardiac death in people with heart issues. Nowadays, scientists are looking into whatever meditations can help with heart and mental health problems. Nowadays, scientists are using the ECG to measure the heart electrical signals, which is helpful in diagnosis disease. One thing their study is called heart rate variability. This helps understand how the heart is working and it can be important for the health. Now, we have studied on the Raj Yoga meditations Raj Yoga meditation is a unique type of meditation linked with Brahma Kumari's group. It's a special because we see with our open eyes. Unlike other meditation where you can close your eyes and think of it, in Raj Yoga meditation, you focus on yourself as a soul, like a little light between your eyes goes. While doing, you also look at a symbol that represents God and think about positive things like peace and love inside you. Now, we have discussed main important, that is the autonomic nerve system. Autonomic nerve system in our study, basically it controls our heart rate, digestion and breathing rate. When we got the stress or active, the gas pedal like sympathetic nerve system which kicks, and when we relax, it the parasympathetic nerve system takes over. Breathing slowly and deeply activates part of the nerve systems and helps us relax. Now, ANS is a charge of our body autonomic functions, and how we breathe can affect whatever we feed, stress or relax. Motivation behind this work is, nowadays in India, heart attacks are responsible for 28% of all deaths. From worldwide till 2019, approximately 9 million people killing from the heart problems, and 6.6 million will get a strokes till in 2019 across the world. About 1 in every 13 people globally has a heart or circulatory problem. So, overall objective of our work, main objective is to effect of the HRV, what are the effects, what are the clinical applications, what are there the predictive model and advanced analytics of the work. This is basic electrocardiogram signals in having, there are mainly QRS complex. In QRS complex, from this one we can easily find out what are the disease, what are the heart attacks and strokes. Several disease we can find out from the ST segments, from the P wave, from the T wave also. These are the pre-processing of the signal. Actually, in our studies, we are having the 30 minutes of data equations from the BKA students, from the Brahma Kumari. And for the pre-processing, we need, as first of all, we have taken the 10 minutes data of before meditation, 10 minute data during meditation, and 10 minute data of ECG after meditation. There are different types of noise in our data, so we need different techniques here we have applied to remove the noise. As from the picture we can see, the earlier was the upper one figure is having the noise and lower one figure in having the without noise, that is the filtered signal. These are the parts of the HRV which we have to do, that these are the AVNL, SDNL, RMSG, PLN50. These are the time domain parameters which we have analyzed. Afterwards, there are the heart rate fragmentation parts, these are the PIP, IALS, PSS. Now the frequency domain parameters, these are the frequency domain parameters. These all are the important parameters for the analysis of our the heart rate variability for this study. Now these are the nonlinear parameters, short-term variability, long-term variability, alpha 1, alpha 2 and sample entropy. Now we have applied the statistical analysis of our data acquired signal. As we have acquired the data of 30 minutes and we have divided in three parts, 10 minutes before, during and after meditation. We have applied here two statistical tests, that is the Stein-Wilcoxon time test and Friedman test. Here data shows that in three parts, that is the pre, mid and post. We can easily see meditation parts is increases with respect to pre-meditation, and this is good for the meditation, and this study proved that during the meditations heart rate variability increases. And for these 24 subjects, basically we have taken for this study 26 subjects of ECG recording. In that one, 11 subjects had not acquired the good signals. Due to that, we have taken the 24 subjects, and these are the statistical parameters of 24 all subjects. Similarly, without this subject, without showing the all 24 subjects, we have taken the box plots of all time domain parameters. Similarly, we have also studied for the heart fragmentation parameters on this PIP-IALS. Here also we have applied two tests, Friedman test and Wilcoxon signed test. Here also we can, for the meditation, PIP parameter should be decreases. Then we can say here meditation PIP parameter decreases from 45 to 38. This is good sign for the heart rate variability for the meditation. Similarly, we have also find out the box plots of all 24 subjects accordingly. And this box plot is for without all 24 subjects. Now, we can go for the frequency domain parameters. For the frequency domain parameters, we have again applied for the Friedman test and Wilcoxon signed test. Here also, we can say the changes during the meditation parts with respect to the pre-meditation part. Basically, we have find out the changes for the 5% of the three data, pre-meditation, during meditation and post-meditation. Afterwards, similarly, we have again here achieved the all 24 subjects of the box plot. These are the box plot without showing the all 24 subjects. And again, one very important nowadays nonlinear parameters, again we have find out the Friedman test and Wilcoxon signed test. Here again we can see the HD1 part is also increases during the meditations and HD2 is also increases during the meditation. Here HD1 is the short-term variability and HD2 is the long-term variability and the sample entropy is for that one. Here we can also achieve that 5% of significant difference in both Wilcoxon and Friedman test. Now, similarly, we got the box plots of all 24 subjects and this box plot without having the 4 subjects. From this study, we find out the conclusion when people meditate, their heart rate variability goes up. This means parasympathetic activity increases with respect to sympathetic activity. These changes are most noticeable during meditation itself, before and after meditations. One more conclusion we can say that during meditation, the HRV patterns becomes more irregular and less complex. This study suggests that meditation makes the heart rate more stable. Overall study, we can say that meditation seems to increase relaxation in the body, boosting the parasympathetic systems and making the heart rhythms more steady. These are the references. We have studies from the various literature reviews and we have used the references for this study. And for this one, we extend our sincere gratitude for this study to B.K. Srikant and B.K. Sundarani from the Spiritual Spark Centers for generously granting us permission to conduct this study. And we also thank B.K. Sanjay Bhai and B.K. Singha from A Zone and B Zone Durgapur for their valuable support for collecting the ECG data from the Brahma Kumari Durgapur Center. Thank you.
Om Shanti. Agar ये सारी चीजें अगर साधारण भाषा में समझना है तो बड़ा मुश्किल है. इसके लिए आप इसको दोबारा जाके चेक कर लीजिएगा, YouTube पर देख लेना. इस पर एक छोटा सा मैं अनुभव आपको सुनाता हूं कि एक अगर इस सारे जो कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करके किसी साधारण व्यक्ति को सुनाना हो तो कितना मुश्किल है. लेकिन कई बार एक माशेलकर जी एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि कोई उनकी दादी का एक्सपीरियंस सुना रहे थे कि बहुत जल्दी हर एक बात को क्विकली पकड़ लेते थे और आसानी से बता देते थे. तो हमारे दो भैया के दो बच्चे हैं, उन्होंने वो कोई एक MBA एक BHU से कर रहा है, एक उसी से कनेक्टेड यूनिवर्सिटी है उसके साथ कर रहा है. तो उन सबको स्कॉलरशिप मिलती है. तो अपनी दादी को समझा रहे थे कि मेरा स्टेट गवर्नमेंट कन्वर्ट करता है, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है. वो काफी देर से परेशान किया हुआ था उसको और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था. उसने कहा इतनी बड़ी बात तुम इतनी देर से समझा रहा है, इसको तो दो शब्दों में बता सकती हूं. अच्छा, तुमको मोदी देता है, इनको योगी देता है, इतना ज्यादा क्यों करना है. तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये सब आप जाके दोबारा देखेंगे तो बहुत अच्छा. और अभी एक चीज बड़ी अच्छी और सामने आई है कि हमारे श्रीकांत भाई सुना रहे थे कि हमारे जैसे आप लोग यहां पर ऑफ द डायस मतलब बैठे हैं और अच्छे से सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं और हमारे यूट्यूबर्स भी इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं. कहते हैं कि 700 से 750 व्यूअर्स रोज इसको व्यू करते हैं, देखते हैं. और टोटल व्यू इन चार दिनों में लगभग 3200 से भी ज्यादा हैं और इन चार दिनों में 41 से ज्यादा लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, तो जरूर स्पार्क पिंक का एक आप लोगों का देखो कितना अच्छा चारों तरफ जा रहा है। और क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स से पहले एक बात आपको सुना दूं कि आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन है 8:30 बजे मेडिटेशन हॉल में नीचे है शायद वो, और सूरज भाई जी उपस्थित रहेंगे। और भाई साहब का नाम याद आया है तो उन पर भी एक बात, किसी ने इसी में से मेरे से पूछा कि यार ये जो मेडिटेशन आप लोग करते हो इसमें ये ऊपर का खाली हो जाता है सारा, तो मैंने कहा मतलब, कहते ये जो सूरज भाई साहब है इनका भी यहाँ नहीं है आपका भी नहीं है, तो मैंने कहा जो योग बहुत अच्छा लगाता है उसका खाली हो जाता है, तो कहते अच्छा जिसके बाल है उसका, मैंने कहा वो उनसे पूछना। तो इस तरह से मुझे मतलब अलग अलग तरह के मिले हैं बाबा के बच्चे जो आज हम सबसे ऐसे प्रश्न करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये हमारी अपनी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी बहुत अति मृदुभाषी, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से सबको बोलते हैं, बड़े कम शब्दों में सारी चीजों को कह जाते हैं। और दुनिया में धृतराष्ट्र को संजय ने बहुत कुछ बताया, आज वो आपको आपके सामने बहुत कुछ रखने वाले हैं। तो आदरणीय संजय भाई साहब जो हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, इनका जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। आप ज्ञान सरोवर में ही रहते हैं भाई साहब, को आपने कल भी सुना था और आज आपके सामने धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं संजय भाई जी।
ओम शांति। आदरणीय मंच, सभा में विराजमान भाई बहने, पिछले चार दिनों से आप सब यहां पर हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सब सुन रहे हैं। आपको देख करके यहाँ की प्रकृति भी बहुत खुश है। पिछले 1.5 महीने से बारिश हुई नहीं थी, लेकिन आप जब आए तो ये प्रकृति भी बहुत हरी भरी हो गई। हम सबकी यही सुविक्षा है और दुआ है कि आपका जीवन भी ऐसे ही हरा भरा रहे। एक बहुत सुंदर विषय को लेकर के पिछले चार दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों को हम कैसे समन्वित करें, और हम जानते हैं कि ये जब तक दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक जीवन का उद्धार होगा नहीं। एक समय ऐसा भी था जब दोनों मिले हुए थे, जीवन में बहुत सुख शांति थी। जब से ये दोनों अलग हुए जीवन बहुत नीचे गिरता गया, दुखमय होता गया। अब जरूरत है फिर से इन दोनों को आपस में मिलाने की। विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन जिस गति से जीवन में दुख और अशांति दर्द बढ़ रहा है, अब विज्ञान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सार में कह सकते हैं कि मेडिटेशन के बिना अब हमारा गुजारा है नहीं। ये धीरे धीरे सीखना हमारी मजबूरी बन जाएगी, मजबूरी बन जाए इससे पहले खुशी से हम इसे सीखें और अपने जीवन के दुख दर्द को मिटाएं। आज वैलेडिक्ट्री सेशन है इसका, हम कह सकते हैं कि समापन सत्र है। ये जो चार दिन का कॉन्फ्रेंस है उसका ये समापन सत्र है, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हमारे भीतर हुई है उसका थ्योरी पार्ट आज समाप्त होता है, और यहां से जाने के बाद इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है अब शुरू होगा। आप जब जाएं तो इस जो कुछ भी यहां सुना है समझा है उसको जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें और इस मेडिटेशन को थोड़ा थोड़ा रोज जरूर सीखें। अनुभव कहता है कि लाखों का जीवन इससे बेहतर बना है, हमारा भी जरूर बनेगा। आप सब इस कॉन्फ्रेंस में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑडियंस हैं, आपके बिना तो कोई भी सभा पूरी हो नहीं सकती। तो इस धन्यवाद के क्रम में मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत धैर्यता पूर्वक सब कुछ सुना समझा, उसे ग्रहण किया। ये सारा संसार एक खेल है, एक नाटक है, और हम सब उसकी कठपुतलियां हैं, और सबकी डोर किसके हाथ में है? सबकी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है, उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। करता भी वही है, कराता भी वही है, हम तो मात्र निमित्त हैं, उसके इशारे पर चलते हैं। हम जो भी करते हैं हम लोग तो यही मानते हैं, हमें यही सिखाया जाता है, सब वही करता है, हम तो मात्र सहयोगी हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए मैं उस परमपिता परमात्मा को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हम लोग तो ये सीखते हैं कि बाबा यहाँ है, सब कुछ देख रहा है, उसकी प्रेजेंस हर जगह है। उस भावना से जब हम करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है और योग सहज रूप से हमारा उससे जुड़ा रहता है। ये भी एक बहुत सुंदर तरीका है। स्पार्कविंग वर्ष भर में बहुत सारे कार्यक्रम, अनगिनत कार्यक्रम करता है और इसके पीछे जो हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है वो है हमारी आदरणीय अंबिका देवी जी। आपके मन में नए नए विचार आते रहते हैं, नई नई संकल्पनाएं आती रहती हैं और वो न खुद चैन से बैठती हैं न हम लोग को बैठने देती हैं। हमेशा उनके मन में ये रहता है कि कैसे इस संसार में बाबा का ज्ञान फैले, कैसे विज्ञान और अध्यात्म जल्दी से जल्दी आपस में मिले और ये संसार में जो दुख शांति है, लोगों के मन में इतना दर्द है, उससे उनको राहत मिले। उनकी वाणी से भी आप समझ सकते हैं उनकी वाणी में कितना ओज और तेज है। जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि हम सुनते ही रहें। दीदी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आप यूं ही नए नए प्लान्स हमें देते रहें और हम एग्जीक्यूट करते रहें। और इस श्रृंखला में मैं दूसरे नंबर पर श्रीकांत भाई को लूंगा। इनकी उम्र की अक्सर लोग चर्चा कर देते हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटे तो छोटे ना, क्या कहते हैं सुभान अल्लाह कहते हैं ना, मुझे वो नहीं आता क्या बोलते हैं सुभान अल्लाह। इनकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन जब भी मैं इनके साथ अक्सर रहता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक, देश के नामी ग्रामी लोग इनसे मिलते हैं और जब इनका एजुकेशन पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, आपका ये एजुकेशन, आपका जो ज्ञान है ये तो कई बार हमसे अधिक लगता है। और जो भी आदरणीय अंबिका दीदी जी के जो विचार होते हैं, इनके प्लान्स होते हैं, उसको धरातल पर लाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में अगर सबसे अधिक किसी की मेहनत है तो श्रीकांत भाई जी का ही है। वो स्टेज पर कभी नहीं आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन रियली वो जैसा कह रहे थे कि न खाना खाते हैं, नाश्ता कर दे, उनको पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है नाश्ते के लिए, भोजन के लिए। मैं बहुत दिल से श्रीकांत भाई जी का धन्यवाद करता हूं। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं रामचंद्र पूर्वे जी, क्या कहें इनके बारे में, कोई भी बड़ा VIP हमारे घर में आता है तो कई बार थोड़ा लगता है ना कहां बिठाएं, क्या खिलाएं, कैसे रखें, लेकिन जब रामचंद्र पूर्वे जी आते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हमारे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग आया है। जैसे बड़ा बुजुर्ग कोई आता है तो हमें भी उससे सहयोग मिलता है, हम रिलैक्स रहते हैं। बहुत ही सरल चीत, बहुत ही विनम्र, बहुत ही मिलनसार, बाबा के घर में अक्सर आते रहते हैं और अपने अनुभवों से स्पार्क विंग को हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। हम पूर्वे जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आज के जो स्पेशल गेस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी जी, आपने एक बहुत सुंदर बात कही सर्वे भवन्तु सुखिनः कि आपने बाबा के लिए कहा कि बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि संसार में इस भाव को जागृत करे। भगवान ने तो इस भाव को जागृत कर दिया है, बस इसमें हम सबको अपना सहयोग देने की जरूरत है। वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है, करना तो हमें पड़ता है, क्योंकि ये संसार जो बनेगा, जो सुख में संसार बनेगा, उसमें रहना हमें है, वो नहीं आता है रहने के लिए, तो वो मार्गदर्शन देता है, करना हमें है। हम सब जरूर इस कार्य में सहयोग दें। तो मैं श्री प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आज के इस वैलिडिक्ट्री सेशन में जो तीन गेस्ट्स ऑफ ऑनर हैं, डॉक्टर विजय कुमार सालविया जी, श्री यूएस तनेजा जी और डॉक्टर सुहास कुलकर्णी जी, मैं आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबने भी बहुत सुंदर विचार रखे। समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं। भौतिकवाद को तो बढ़ावा देने वाले बहुत लोग हैं, पर ऐसे लोग जो आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें, हमें उनका साथ जरूर रखना चाहिए। आप तीनों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। अभी अभी आपने एक बहुत सुंदर वीडियो प्रस्तुति देखी जो स्पार्क की ओर से की गई थी, और इस रिसर्च में हमारे जो रघुवंश सिंह जी और विवेक रंजन, ये दो भाई इसमें सहयोगी रहे हैं, हम उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी अलका दीदी जी, अभी अभी आपने योग किया, उन्होंने योग हमें कराया। हम कह सकते हैं कि योग का एक सुंदर चलता फिरता सैंपल अगर किसी को देखना है, उसका स्वरूप देखना है, तो हम अलका दीदी जी को देख सकते हैं। आप हमारे पूरे महाराष्ट्र जो जोन है उसके स्पार्क की तरफ से जोनल डायरेक्टर हैं। दीदी, हम आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी बच्ची ने मोबाइल डी एडिक्शन पर बहुत सुंदर मोनो एक्टिंग की, कुमारी जया। कल भी इन बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी, तो उन सभी बच्चों के साथ साथ आज जो कुमारी जया ने किया, मैं जया का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बहन हमारे बीच आई थी, मुझे नाम तो उनका भूल गया, जो यूएसए से आई, और उन्होंने बहुत सुंदर योग का अनुभव हमें सुनाया। वास्तव में योग तो है ही बहुत चमत्कारिक। इस योग का चमत्कार तब समझ में आता है जब हम थोड़ा इसको करते हैं। हमारी आदत क्या है, हम सुनते बहुत हैं, सुनाते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। थोड़ा करके देखें, ये योग हमारे जीवन को थोड़े दिनों में पूरी तरह बदल देगा। तो एक बहुत सुंदर इंस्पायरिंग अनुभव शेयर करने के लिए हम ये बहन का भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सुशील चंद्रा जी, जो DRDO के एक बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं और बाबा के बच्चे हैं, और हमारे एक बहुत ही खास हैंड है, स्पार्क विंग के कोर ग्रुप मेंबर हैं। आपने ये पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसको, उसका एक सुंदर रिव्यू, उसकी एक सुंदर, एक बहुत संक्षिप्त झलक हम सबके सामने रखा। चंद्रा जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लास्ट में ये हमारे अनुज भाई, कुछ बोलने की जरूरत नहीं लग रही ना इनको, बहुत सुंदर मन संचालक है, हंसते कम है और हंसाते ज्यादा है। कितना भी लंबा समय हो, किसी को बोर नहीं होने देते। भगवान ने इनको एक विशेष ये गुण से नवाजा है, एक बहुत विशेष योग्यता आपको दी है। आप भारतवर्ष में जाते रहते हैं, आप दिल्ली से हैं पर पूरे भारतवर्ष में आते जाते रहते हैं, और बहुत सुंदर मंच संचालन करते हैं। आपके पास एक पिटारा है, उसमें ढेर सारी शेरो शायरी और कहानियां और चुटकुले और क्या क्या सब भरे हुए हैं, और बहुत अच्छे तरह से मंच का संचालन करते हैं। हम अनुज भाई का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। अंतिम दिन है, फिर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये तो जो प्रत्यक्ष लोग थे, परंतु जो प्रत्यक्ष नहीं है, पर्दे के पीछे है, जैसे हमारा लाइट डिपार्टमेंट है, साउंड डिपार्टमेंट है, स्टेज की इतनी सुंदर जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, डेकोरेशन है, ये इन सब के पीछे बहुत मेहनत लगती है, महीनों की बहुत तैयारी लगती है। तो मैं वो सारे टीम को भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, और पुनः इसी शुभ आशा के साथ कि जब आप यहाँ से जाएं, तो जब भी कोई व्यक्ति जाता है 2-4 दिनों के बाद अपना सामान पैक करने लगता है, तो पैक करते समय ज्ञान की जो बातें मिली हैं उसको गलती से रूम में मत भूल जाइएगा, उसको जरूर साथ लेकर के जाइएगा। सामान एक दो भूल जाए तो चलेगा, वो आप वहाँ खरीद सकते हैं, परंतु ये भूल गया तो जीवन थोड़ा नीरस सा रह जाएगा, ये जरूर साथ लेकर के जाना। ओम शांति। हाँ, मैंने कहा कुछ का छूट ही जाता है, खास करके भोजन की व्यवस्था। भोजन आप सबको अच्छी लगी, भोजन अच्छा लगा, यहाँ का भोजन इसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं पड़ता। हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में ब्रह्मचर्य को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही महत्व भोजन के शुद्धि को दिया जाता है। इस पर एक बहुत लंबा व्याख्यान हो सकता है, समय नहीं है इसलिए उसकी चर्चा तो नहीं की जा सकती, लेकिन अन्न एक ऐसी चीज है जो चाहे तो हमारे जीवन के आधा दुख दर्द को केवल अन्न की शुद्धि समाप्त कर सकता है। इस संसार में परेशानी तब से बड़ी है जब अन्न शुद्ध हुआ है। तो यह जो भी भाई बहने भोजन बनाते हैं वो सब योगी भाई बहने। हम बहुत सारे गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, देख करके उनके मन में बहुत इच्छा होती है कि हम भी थोड़ी मदद करें, और डिपार्टमेंट्स में हम उनकी हेल्प ले लेते हैं। लेकिन जो मिनिमम एक साल से ब्रह्मचर्य की पालना करता है, राज्यों का रेगुलर अभ्यास करता है, सत्संग करता है, हम उसको ही भोजन के लिए उसमें सेवा के लिए लाभ करते हैं। तो योगियों का भोजन आपको मिला, आपको अच्छा लगा, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ी। हम जो भी भाई बहनों ने ये भोजन बनाया खिलाया हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से जाएंगे तो प्रसाद लेकर के जाएंगे, और रोज आपने चाय के साथ भी प्रसाद खाया होगा, बीच बीच में भी खाया होगा। तो जो भी प्रसाद वितरण विभाग है, उसका जो कुकिंग विभाग है, उसका भी धन्यवाद। साथ साथ जो लोग रह गए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट है, मीडिया है, जो हमारा वीडियो डिपार्टमेंट है, बहुत सारे हॉल के मैनेजमेंट के भाई बहने, आप सब तो 10:30 यहाँ से चले जाते हैं, वो 11-12 बजे तक यहाँ सफाई करना, फिर अगले दिन के लिए तैयार करना। तो दिल से सबका धन्यवाद, एक बार आप सबका पुनः धन्यवाद। ओम शांति।
एक बार संजय भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भाई का जो एक लहजा है वो बड़ा वजनी है, शरीर भाषा को बड़ा वजन तरीके से हमारे बीच में रखते हैं। तो कहते हैं शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे तो दीवारों पर वैसे भी वेलकम लिखा जाता है, तो कितना अच्छा आप बोलते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आप सबके लिए एक अच्छी बात है कि हमारे महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं। वाह वाह बोले कि हमारे महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। तो एक बार आप सबका पुनः स्वागत है, सम्मान है, और हम चाहेंगे कि आप बार बार यहाँ आए, यहाँ का भोजन खाएं, यहीं रह जाएं, फिर दोबारा घर ना जाएं। और हमारा जो स्पार्क विंग है वो डेफिनेटली, हमारी दीदी जो बैंगलोर में है, दीदी एक ख्याल आ रहा था कि आपके यहाँ भी एक रिट्रीट सेंटर है, तो दीदी ने तो खैर उसमें टाइम कम होता है, लेकिन एक बार आप वहाँ भी चाहें तो विजिट करें, बहुत अच्छा बना हुआ है। जो वहाँ गया है वो मैं, मेरे को दीदी ने आज तक खुद ही नहीं बुलाया, तो आप सब को एक बार जब बुलाएंगे तो आपके साथ हम भी चले जाएंगे। तो वहाँ के लिए निमंत्रण स्पेशली। और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं।